ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सोते रो
J
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
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 जय राधा माधव
यशोदानंदन
ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन
ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
बाकी रह जाएगा, एक साल इंतजार करना पड़ेगा।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन
रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन
यमुना तीरवन
चारी, यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 नटवर नागरन मन गोविंदा,
नटवर नागर नंदा भज मन गोविंदा,
नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा,
नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर मुख चंदा 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 भजोरे मन गोविंदा,
सब देवन में कृष्ण बड़े,
सब देवन में कृष्ण बड़े,
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं,
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं,
कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं,
कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े,
कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं,
कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं,
जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा,
जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा,
नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा,
सब सखियन में राधा जी बड़ी है,
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 राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी,
राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है,
राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है,
राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है,
जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा,
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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा,
बोलो नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा,
दम दम पर बहकत मोर मलाल गिरा,
Hey! धन में जोर बदन में जोवन में सुख है ना छपन में जीवन जन में जपला धन में अजमेर वचन में देह धरन में नाह कुंड में बरसाना चित चेत सियाना फिर नहीं आना जग में आकर
मर जाना रे
राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी
राधे
राधे
राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे
राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे
राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
गौरानिताय
जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय
गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय
गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय
प्रभुपद 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 जय प्रभुपद
जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद
प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद
जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद
जय जय प्रभुपा
प्रभुपा
प्रभुपा प्रभुपा
जय जय प्रभुपा प्रभुपा
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद श्रीमद् भागवतम स्कंध एक अध्याय आठ श्लोक क्रमांक 29
न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम्
न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम्
तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्
तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्
न यस्य कश्चित् इतोऽस्ति कर्हिचि
न यस्य कश्चित् इतोऽस्ति कर्हिचि
द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्
द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्
न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम्
न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम्
तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्
तवेह मानस्य नृणां विमण्डनम्
न यस्य कश्चित् इतोऽस्ति कर्हिचि
न यस्य कश्चित् इतोऽस्ति कर्हिचि
द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमामतीर्णाम्
द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमामतीर्णाम्
जन्म कर्म च विश्वात्मन
जन्म कर्म च विश्वात्मन
जस्या कर्तुरात्मन
जस्या कर्तुरात्मन
तिर्यग नृशिषु यादसु
तिर्यग नृशिषु यादसु
तदत्यन्त विडम्बनम्
तदत्यन्त विडम्बनम्
गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत्
गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामम्
याते दशा शुकलीलाञ्चन सम्भ्रमाक्षम्
याते दशा शुकलीलाञ्चन सम्भ्रमाक्षम्
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य
सा मां विमोहयति भीरपि यद् विभेति
सा मा विमोह यतिभिरपि यदिभेति
केचिदाहुरजं जातम्
केचिदाहुरजं जातम्
पुण्यश्लोकस्य कीर्तये
श्लोकस्य कीर्तये
यदो प्रियस्यान्ववाये
यदो प्रियस्यान्ववाये
मलयस्येव चन्दनम्
मलयस्येव चन्दनम्
हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तो आप सब भक्तों का बोलिए अरे भागवत का सार तो आप लोग जान लिए हैं तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा में कहा गया है, जीवच्छो निगदिते सतु पाप कर्मा शेय श्रुतम शुक कथा वचम नम न कश्चित् दृक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम वदन्ति दीवी देव समाज मुख्या। हमसे कई गुना श्रेष्ठ हैं देवतागण जो स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग में रहने वाले कभी नहीं मरने वाले देवता पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग में बैठे बैठे देवतागण सोचते हैं कि कितने धन्य हैं पृथ्वी में रहने वाले जो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत की कथा सुन सकते हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता सोचते हैं कि कहां पृथ्वी में रहने वालों का भाग्य और कहां हम जैसे तुच्छ जो स्वर्ग में मर रहे हैं। कई लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा करते हैं परंतु स्वर्ग में रहने वाले देवता मनुष्य बनना चाहते हैं क्योंकि स्वर्ग में भागवत सुनने की व्यवस्था नहीं है। यद्यपि तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम भगवान कहते हैं कि स्वर्ग लोक विशाल है, उनकी मात्रा विशाल है और स्वर्ग में भोग भी विशाल है, स्वर्ग की आयु भी विशाल है, परंतु इतने इतना विशाल होते हुए भी उस स्वर्ग में क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, एक ना एक दिन इस पृथ्वी पर जरूर आना पड़ता है। तो स्वर्ग में रहने वाले देवता सोचते हैं धन्य है मनुष्य देह प्राप्त करने वाले और उसमें भी धन्य है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान की लीला सुनने के लिए मिला है, भगवत कथा सुनने के लिए मिला है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो अपने कान के माध्यम से, कान के द्वारा भगवत कथा नहीं सुनते हैं, गाली देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं जिनके कान में भगवत कथा नहीं है, जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, श्रवण रंग हरि अहि भवन समाना। जिनके कान में भगवत कथा नहीं है उनके कान कैसे हैं? कहते हैं सर्प को रहने वाले बिल जैसे हैं। और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, उनका जीवन नष्ट है, शव के समान है। शव में और भजन नहीं करने वाले मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, भजन करना चाहिए, भगवत कथा सुननी चाहिए। और जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, देवतागण कहते हैं धिक्तम, उस मनुष्य को धिक्कार है। धिक्तम नरम पशु समम भूवि भार। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भगवत कथा नहीं सुनते हैं वही इस पृथ्वी पर भार है, बोझ है और पशु के समान है। और ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो भगवान की कथा नहीं सुनते। तो इतना सुंदर देह मिला है भगवत कथा सुनने के लिए, तो आइए कुछ क्षण के लिए हम हमारे इस देह को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगाए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अष्टम अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं और इस अष्टम स्कंध में भगवान की शुद्ध भक्ता महारानी कुंती के द्वारा प्रार्थना हो रही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हैं और उसी समय महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। अद्भुत प्रार्थना है। कल हमने श्रवण किया, महारानी कुंती भगवान से कहती हैं कि प्रभु जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मन तिर्यक नशीषु यादसु तद अनंत विडंबनम। प्रभु यद्यपि आपका कभी जन्म नहीं होता है और आप कभी मरते भी नहीं हो, परंतु आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करते हो, और वह अवतार कैसे हैं? कहते विडंबनम, आश्चर्यजनक आपके अवतार हैं, अद्भुत अद्भुत अवतार आप धारण करते हो। कल हमने श्रवण किया तिर्यक पशु का रूप धारण करते हो, तो कभी ऋषि का रूप धारण करते हो, तो कभी मनुष्य का रूप धारण करते हो, तो कभी नर और सिंह का रूप धारण करते हो। अद्भुत अद्भुत आपके रूप हैं। और प्रभु यह लीला आप अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। प्रभु आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। और आपने मां यशोदा को जो आनंद दिया है वह तो अद्भुत है। देवी कुंती उस दिन को याद कर रही है जिस दिन गोपिया ददे त्वयि कृता गसी दाम तावद। जिस दिन मैया यशोदा ने कृष्ण को दाम से, रस्सी से बांधा था, वह लीला कुंती महारानी को याद आ रही है। वह लीला कैसी है? एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। सुखदेव गोस्वामी भागवत के दसम स्कंद के नवम अध्याय में कुंती महारानी को जो लीला स्मरण हो रही है उस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि दिवाली का समय था और उस दिवाली के दिन यशोदा ने अपनी सभी दासियों को अलग अलग काम में लगा दिया और स्वयं निर्म मंथ स्वयं दधि और स्वयं दही का मंथन करने के लिए बैठे। बहुत सुंदर बहुत बड़ा मटका था, उसमें दही था और एक पिलर के साथ उस मथनी को बांधा हुआ था और यशोदा मैया उस रस्सी के द्वारा उस दही का मंथन कर रही थी। सुबह भोर में यशोदा मैया 3:30 जग चुकी थी और यशोदा मैया 3 सभी दासियों को काम बांट दिया था। भक्तों, इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठकर भगवान का भजन और भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रातर हुत हुताग नहीं है, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आया है, एक दातु मुनय प्रातर हुत हुताग नय सत्कृतम सूत मासिनम प्रपच्छु इदम आदरात। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत भक्त ये सब सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य उदय के 2.5 पहले जो स्नान करते हैं उसे देव स्नान कहा जाता है और सूर्य उदय के 30 पहले जो स्नान करते हैं उसे ऋषि स्नान कहा जाता है और सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान करते हैं उसे असुर स्नान कहा जाता है। सब लोग समझ लेंगे कौन असुर स्नान कर रहे हैं कौन ऋषि स्नान कर रहे हैं। आज तो मैं यहां पर सब लोग सूर्यवंशी हैं, सूर्य सिर पे आ जाने के बाद सब लोग उठते हैं, परंतु सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था तो करते करते मैंने कह दिया कि आज भी व्यक्ति भगवान से बात कर सकता है, आज भी यदि भगवान को मिलना है भगवान से बात करना है तो आप कर सकते हैं और उसका फोन नंबर भी हमारे पास है। इस पृथ्वी पर यदि किसी को मोबाइल लगाना हो तो 10 का होता है, परंतु कृष्ण से यदि बात करनी है तो 16 का नंबर है और यह नंबर ऐसा है जो दिन में और रात को और शाम को बहुत एंगेज रहता है क्योंकि बहुत लोग लगे रहते हैं इसमें, परंतु यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस नंबर को डायल करो तो तुरंत लग जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30, वैसे ब्रह्म मुहूर्त एग्जैक्ट 3:30 होता है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि कोई भगवान के नाम का जप करता है तो निश्चित भगवान के प्रति स्नेह और प्रेम उत्पन्न होता है। माँ यशोदा सुबह 3 जगकर भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने लाला के लिए, कृष्ण के लिए दही मथने में लग गई और दही मथने में मथते मथते यशोदा मैया अपने मुख से बहुत सुंदर भजन कीर्तन गा रही है। शोमम वास पृथुकटी तटे बिभ्रती सुक्त नब्धम। यशोदा मैया ने सुंदर साड़ी पहनी है और सुंदर साड़ी पहनकर वस्त्र आभूषण पहनकर अपने कृष्ण के लिए मक्खन बनाने के लिए बैठी है। यशोदा मैया घर के काम में लगी हुई है और कृष्ण के लिए वह कार्य कर रही है। कार्य सबको करना होगा, ऐसा नहीं है कि कार्य किसी को नहीं करना है, कर्म और घर के काम सबको करने हैं, परंतु मैया यशोदा की तरह यशोदा जो कार्य कर रही है वह कृष्ण के लिए है और कार्य करते करते क्या कर रही है, कथा गानम नाट्यम। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के नाम और भगवान श्री कृष्ण की लीला के गीत गा रही है और जब यशोदा मैया गीत गाने लगी तो वह जो मथनी का घर घर आवाज था वह आवाज मृदंग का काम करने लगा और यशोदा मैया के हाथ में जो चूड़िया थी वह चूड़िया करताल का काम करने लगी। तो सुंदर यशोदा मैया अपने घर का कार्य कर रही है और कार्य करते करते भगवान का नाम गा रहे हैं। सभी भक्तों को यह उपदेश है कि घर के काम कीजिए, परंतु घर के काम करते करते भगवान का नाम लीजिए। यदि कार्य करते करते भगवान का नाम लेंगे तो उस कार्य में कर्म बंधन नहीं लगेगा, परंतु यदि किसी के बारे में अनाप शनाप सोचकर हम घर के कार्य करेंगे तो उसमें कर्म बंधन लगता है। इसलिए एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा है कि घर के काम करते करते भगवान का नाम लेते जाना चाहिए। कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।
जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।
सीताराम
सब लोग
प्रेम से सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, नहीं प्यारे राम तेरे साथ में,
अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में।
विधि का निधान जान हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। सीताराम सीताराम
सीताराम कही
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा,
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा।
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा,
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के,
जिंदगी को डोर सौंप हाथ दीना नाथ के।
महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे,
महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे।
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे,
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे।
नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे,
नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे।
साधु संग राम संग अंग अंग रंगिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि घर के कार्य कर रही हैं और करते करते भगवान का गान कर रही हैं। कृष्ण ने आज तक जितनी भी लीला की थी वह सभी लीला को छंद में गा गाकर अपने घर के कार्य कर रही हैं। मैया यशोदा मक्खन बना रही थी, उस समय यशोदा मैया के बालों में मालती के पुष्प लगे हुए थे। आज भी कुछ स्त्रियां श्रृंगार के लिए अपने सिर पर फूल लगाती हैं। यशोदा मैया के बालों में मालती के फूल थे, परंतु जब यह कृष्ण के लिए मक्खन बनाया जा रहा था तो धीरे धीरे करके सारे फूल नीचे गिर गए। एक आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं कि यशोदा जी के सिर से फूल नीचे क्यों गिर गए। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ आध्यात्मिक होता है। वह फूलों ने सोचा कि यह मां यशोदा मैया कृष्ण के लिए कार्य कर रही हैं और कृष्ण के लिए कार्य करते करते कृष्ण का भजन गा रही हैं। अरे ऐसे भक्त के सिर पर नहीं, ऐसे भक्तों के तो चरणों में रहना चाहिए, इसलिए एक एक करके ऊपर से नीचे आ गए। मालती के पुष्प भी सोचने लगे कि भक्तों के चरणों में रहना चाहिए। ये सत्य बात है, भक्तों के चरणों में रहने में बहुत फायदा होता है। भागवत के अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। बहुत बड़ा हाथी गजेंद्र मगरमच्छ के गाल में फंस गया, परंतु जब अंत में अंतिम सांस बची तब उस हाथी ने भगवान को याद किया, तुरंत भगवान विष्णु वहां पर आए। भागवत में वर्णन है कि भगवान विष्णु अपना चक्र चलाए और गजेंद्र की रक्षा करने के लिए उस मगरमच्छ का सिर काट दिया और वह मगर और मगरमच्छ गंधर्व रूप धारण करके गंधर्व लोक में चला गया। और हाथी तो अभी उस हाथी के शरीर में ही था और उसके बाद हाथी भगवान का पार्षद बनकर भगवान के धाम में गए। यहां प्रश्न यह होता है कि भगवान को हाथी ने बुलाया था, परंतु हाथी से पहले वो मगरमच्छ भगवान के धाम में गया क्यों? यद्यपि उस हाथी ने भगवान की स्तुति की, हाथी ने भगवान हरि को बुलाया, परंतु हाथी के पहले मगरमच्छ चला गया भगवान के धाम में। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं क्यों? क्योंकि मगरमच्छ ने भक्त का पग पकड़ा था। यदि भक्त के चरण को पकड़कर रखेंगे तो उस भक्त से पहले आप चले जाओगे भगवान के धाम। भक्त की बहुत महिमा है। तो सारे मालती के फूल यशोदा मैया के चरणों में आकर गिर गए और यशोदा मैया अपनी आंख बंद करके भगवान का नाम लेते लेते सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण के लिए मक्खन बना रही थी। और वो मक्खन किस दूध का बना हुआ था? कहते हैं नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है और उसमें 100 गाय स्पेशल है और 100 गाय का जो दूध निकलता है वो दूध एक गाय को पिलाया जाता है, उस गाय का नाम है पद्मगंधा गाय। और पद्मगंधा नामक गाय का जो दूध होता है उसमें स्वाभाविक कमल की सुगंध होती है। गाय के थन से ही जो दूध निकलता है उसमें कमल की सुगंध होती है। आज की तरह वेनिला एसेंस डालना नहीं पड़ता है। पद्मगंधा नाम ही था तो स्पेशल पद्मगंधा नामक गाय का दूध का दही बनाया गया और उस दही का मक्खन कृष्ण के लिए बना रही थी। देखिए भक्तों का भाव देखिए कि कृष्ण के लिए सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए, सबसे बेटर वस्तु कृष्ण को चढ़नी चाहिए। परंतु आज अपने मन को पूछिए जब खाना होगा तो शुद्ध घी खाएंगे और जब भगवान को चढ़ाना होगा तो डालडा घी से वो दिया इत्यादि बनाएंगे। भक्त का यह भाव नहीं होता है, भक्त भगवान के लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो यशोदा मैया पद्मगंधा नामक गाय का दूध, उसका दही और उसका मक्खन बना रही थी कृष्ण के लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण दूसरे कक्ष में सो रहे थे, परंतु कृष्ण जग गए और जगते ही अपनी माँ को ढूंढने लगे। बालक का स्वभाव होता है जगते ही माँ को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया नहीं मिली तो कृष्ण वहां से बाहर आए और देखा कि मेरी माँ कुछ कर्म कर रही है, कुछ काम कर रही है। तुरंत कृष्ण यशोदा मैया के पास आए, उसके पांव के ऊपर कृष्ण ने अपना चरण रखा और यशोदा मैया की गोद में सो गए। तम स्तन्य काम, भगवान श्री कृष्ण दूध पीने की इच्छा हुई इसलिए यशोदा मैया के थन से दूध पीने लगे। परंतु उसी समय एक घटना घटी कि जिस गाय के दूध का वह मक्खन की मक्खन जिस गाय के दूध के दही से जो मक्खन बना रही थी उसी में से कुछ दूध यशोदा मैया ने रसोई घर में गर्म करने के लिए रखा था और गर्म हो रहा था और वह दूध भी कृष्ण के लिए ही था, परंतु बिचारी भूल गई थी। तो कृष्ण यशोदा मैया का दूध पी रहे थे और रसोई घर में वह दूध के उबलने का आवाज आया। आचार्यगण अपने टीकाओं में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ आध्यात्मिक होता है, दूध भी सोचता है। वे रसोई घर में उस तपेली में गर्म होने वाले दूध ने सोचा कि कृष्ण यशोदा मैया के हृदय का दूध पी रहे हैं, कृष्ण यशोदा के हृदय का दूध पी रहे हैं तो मेरा क्या काम है इस दुनिया में, क्योंकि जो नहीं मेरे राम का वो नहीं किसी काम का। ये मनुष्य शरीर यदि भगवान के काम में नहीं आता है तो ये कुछ काम का नहीं है। जरूर जाओ सु जीवन जान की नाथ जिए जग में तुम रो बिन भय। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे जान की नाथ, हे श्री रामचंद्र, तुम्हारे बिना इस शरीर को तो जल जाना चाहिए, जला देना चाहिए आपकी भक्ति और आपकी सेवा के। तो उस दूध ने आत्महत्या करने की सोची। अब तो ये कृष्ण मुझे पिएंगे नहीं इसलिए तपेली से बाहर आने लगा, परंतु दूध जैसे ही बाहर आता है तो छन्न आवाज आती है। यशोदा मैया ने आवाज सुन ली और याद आया कि मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है। सोच लिया कि मेरे स्तन का दूध तो कहीं जाने वाला नहीं है, परंतु वे दूध निकल जाएगा तो कृष्ण पी नहीं पाएंगे, इसलिए कृष्ण को नीचे रखे और दौड़कर रसोई घर में चली गई उस दूध को बचाने के लिए। जैसे ही कृष्ण को यशोदा मैया ने छोड़ दिया, कृष्ण क्रोधित हो गए। कृष्ण ने सोचा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ, मैंने कल कहा था बड़े बड़े योगियों के योग से भगवान नहीं आते हैं, ध्यानियों के ध्यान में नहीं आते हैं, और मैं साक्षात परब्रह्म इसके आंगन में खेल रहा हूं, इनको कृपा दे रहा हूं और ये मुझे छोड़कर चली गई। संसार के लोग मुझे प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं और ये आधे लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। कृष्ण क्रोधित हो गए और सोचा कि अब तो मैं मैया को दिखा दूंगा। तुरंत कृष्ण कुछ उत्पाद करने के लिए देखे तो जिस मटके में यशोदा मैया बहुत सारा दही रखकर उसे मत रही थी, कृष्ण ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर से उसी मटके को फोड़ दिया और धीरे धीरे करके उस मटके से मक्खन दही छाछ सब कुछ निकलने लगा और पूरे कमरे में वो फैलने लगा। यशोदा मैया कुछ देर के बाद जब आई, देखा तो मटका फूटा हुआ है। अब तक यशोदा मैया को विश्वास नहीं था कि कृष्ण गांव में किसी के घर पर चोरी करता होगा, लेकिन अपने ही घर में यह घटना देखकर यशोदा मैया समझ गई, निश्चित कंफर्म हो गया कि कृष्ण निश्चित चोरी करता ही होगा। क्योंकि कृष्ण ने मटके को इस प्रकार से फोड़ा था। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि यशोदा मैया कृष्ण के इस पराक्रम को देखकर पहले तो हंसी, स्मित आया मुख पर, क्योंकि कृष्ण ने वह पत्थर बिल्कुल नीचे मारा था ताकि सब एक बूंद भी न बचे उसमें। तो पहले तो संतोष हुआ कि मेरे पुत्र में बुद्धि है, परंतु दूसरी घड़ी में क्रोध हुआ कि आज तो मैं उसे दंड देकर रहूंगी। यशोदा मैया ने एक छड़ी हाथ में ली और हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को ढूंढने लगी। जैसे ही कृष्ण दिखाई दिए, कृष्ण ने यशोदा को देखा तो तुरंत यशोदा को देखकर कृष्ण भागने लगे। कृष्ण के छोटे छोटे पांव हैं, चरण हैं, और छोटे छोटे चरण से कृष्ण भाग रहे हैं, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा। कृष्ण यशोदा मैया को बहुत भगाए, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, कभी प्रांगण में तो कभी गोकुल की गलियों में निकलकर, कभी किसी के घर में, ऐसे करके बहुत बहुत भगाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का शरीर तो बहुत छोटा था, कोमल था, परंतु यशोदा मैया का शरीर बहुत मोटा था, तंदुरुस्त था, इसलिए कृष्ण को पकड़ने में बहुत थक गई, पसीने निकलने लगे, परंतु कृष्ण हाथ में नहीं आए। भक्तों, कृष्ण को पकड़ने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सुबह उठकर 16 माला जप, 4 नियम का पालन, यह सब कृष्ण को पकड़ने का ही तो प्रयास है, परंतु किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। कृष्ण इतने जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, परंतु यशोदा मैया ने बहुत बहुत प्रयास किया। तो यशोदा जी के प्रयास को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि नहीं नहीं, माता प्रयास कर रही है और बिचारी थक रही है, इसलिए कृष्ण की गति थोड़ी धीमी हुई और यशोदा मैया के द्वारा पकड़ लिए गए। आचार्य कहते हैं कि वास्तव में भगवान को पकड़ने के लिए प्रयास होना चाहिए और प्रयास के साथ साथ भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज भगवत प्राप्ति करने के लिए होनी चाहिए। यदि आप बहुत प्रयास करते हो और भगवान की ओर से कृपा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, और यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो और भगवान कृपा करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए दोनों ओर से, भगवान की ओर से और हमारी ओर से प्रयास होना चाहिए। यशोदा मैया ने पकड़ लिया और पकड़कर कृष्ण को डांटने लगी कि तुम पूरे गोकुल में उत्पात करते हो और यह उखल तुम्हें चोरी करने में सहाय करता है, दोनों को बांध दूंगी। यशोदा मैया के कमर में रस्सी थी, उस रस्सी से कृष्ण को उखल के साथ बांधने का प्रयास किया, परंतु देखा तो दो उंगली व रस्सी कम रही। तब यशोदा मैया ने अपने घर से कई रस्सियों को मंगाया और उसको गांठ लगाकर फिर से रस्सी बांधने गई तो फिर से दो उंगली कम। यशोदा मैया ने अपनी दासियों को कहा, एक काम करो, गोकुल के सभी घरों से रस्सी लेकर आओ। सभी घरों से रस्सी लाया गया, उसे बड़ा किया गया और फिर कृष्ण को बांधा गया तो फिर से दो उंगली कम। तब दासिया कहने लगी कि मैया यशोदा, अब कृष्ण को छोड़ भी दो, क्योंकि कृष्ण के नसीब में बंधन लिखा नहीं है। यशोदा मैया कहती है कि इसी प्रकार कह कहकर तुमने ही कृष्ण को बिगाड़ा है, आज मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूं। यद्यपि कृष्ण भगवान है, ये समझिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, जिसके इशारे से ये दुनिया चलती है, वह कृष्ण मैया यशोदा, उस कृष्ण को मैया यशोदा बांधने के लिए प्रयास कर रही है, और यह लीला महारानी कुंती को याद आ रही है कि प्रभु आपको बांधने का प्रयास यशोदा मैया ने किया। बहुत बहुत प्रयास किया, भगवान ने देखा कि बहुत परिश्रम कर रही है बिचारी माँ, इसलिए मैया यशोदा के हाथ से भगवान श्री कृष्ण बंध गए और अंत में मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। कृष्ण बहुत रोने लगे, मैया छोड़ दो, अभी कभी ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैया ने कहा यही तेरा दंड है, और सभी दासियों को कहा कि चलो आप भी यहां से निकलो और इसे रोने दो। इस प्रकार से मैया यशोदा के द्वारा कृष्ण को बांध दिया गया। आचार्य गण कथा कहते हैं, जब कृष्ण को बांधा यह पता चला बलदेव जी को, और उस समय बलदेव जी गांव के चौराहे में कुछ बैठे होंगे किसी के साथ। तो बलदेव जी को पता चला कि कृष्ण को किसने बांधा है, किसने बांधा है यह पता नहीं चला। इतना पता चला कि किसी ने कृष्ण को बांधा है, तो बलदेव जी कई सारे लड़कों को लेकर किसने कृष्ण को बांधा है, किसने कृष्ण को बांधा है, क्रोधित होते होते कृष्ण के पास आए और रास्ते में बोल बोल कर आते थे कि मुझे जानता नहीं है, आज जिसने कृष्ण को बांधा है उसके जीवन का अंतिम दिन है, वे मर जाएगा, मुझे जानता नहीं है, मैं अनंत शेष हूँ, मेरे ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड टिके हैं। इस प्रकार से बलदेव जी कहते कहते जब कृष्ण के पास पहुंचे तो पता चला कि कृष्ण को यशोदा ने बांधा है। बलदेव जी की सारी हवा निकल गई, यशोदा ने बांधा है तो कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर भी बलदेव जी यशोदा मैया के पास गए और कहने लगे कि मैया मैया पता है आपने किसको बांधा है, तुरंत उसे छोड़ दो, वो कोई साधारण बालक नहीं है। अच्छा, मैया ने कहा साधारण बालक नहीं है तो कौन है वो? बलदेव जी कहने लगे वो साधारण बालक नहीं, रात दिन तुम जिस विष्णु की पूजा करते हो ये विष्णु का बाप है, तीनों विष्णु इससे जन्म लेते हैं और इसी ने नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा, वामन रूप लेकर दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापा, यही राम अवतार लेकर रावण का वध किए, यही विष्णु है, इसी ने ही सब अवतार लिया है और उसको आपने बांध कर रखा है, छोड़ो। अच्छा, ये विष्णु है और तुम कौन हो? बलदेव जी ने कहा मैं अनंत शेष हूं, अनंत मुख है मेरे। इतना कहते यशोदा मैया ने छड़ी हाथ में ली और कहा कि सारे अवतार मेरे ही घर में होने थे, भागो यहां से तो तुम्हें भी बांध दूंगी। यशोदा के कहने पर बलदेव जी भी वहां से भाग गए और बलदेव जी कृष्ण के पास आए और बलदेव जी को देखकर, बड़े भाई को देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, भगवान के आंखों से आंसू निकलने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। सत्यव्रत मुनि इस दृश्य का वर्णन करते हैं कि जब यशोदा मैया के द्वारा कृष्ण को बांधा गया तो उनके हाथों से जो आंसू को साफ कर रहे थे उसके कारण भगवान के आंखों से काजल बह रहा था, निकल रहा था। वास्तव में भगवान की इस रोती हुई छवि को भक्त बहुत पसंद करते हैं, भगवान की इस लीला को भक्त बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इस लीला में भक्त की विजय हुई है, इस लीला में भक्त द्वारा भगवान को बांधा गया है और इस लीला से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम भी यशोदा की तरह भक्ति करेंगे, यदि हम भी भगवान को पुत्र मानकर वात्सल्य माधुर्य साख्य भाव में भक्ति करेंगे तो निश्चित एक ना एक दिन कृष्ण भी हमारे हाथ में बंध जाए। तो भगवान बंधे हुए हैं और रो रहे हैं, यह लीला महारानी कुंती को याद आ रही है कि कृष्ण गोप्या ददे त्वयि कृता गसिताम दाम तावद, गोपी यशोदा के द्वारा आपको दाम से बांधा गया था। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि आप धोखा मत खा जाना, यशोदा ने कृष्ण को दाम से रस्सी से नहीं बांधा है क्योंकि कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता है, साधारण रस्सी कृष्ण को बांधेगी कभी नहीं। अरे कृष्ण रस्सी से नहीं, कृष्ण प्रेम के बंधन में बंधे हैं और प्रेम के वश में होकर कृष्ण कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म जिनके एक इशारे करने पर अनंत कोटि ब्रह्मांड गिर सकते हैं, वह कृष्ण अर्जुन के रथ चलाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। एक समय की बात, महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में रात को मसाज करने के लिए दुर्योधन एक बूढ़े व्यक्ति को रखता था। वह बूढ़ा रात को आता और दुर्योधन का मसाज करता था और वह दुर्योधन का जो वह सेवक था, कृष्ण का भक्त था, एक दिन की बात, उस युद्ध के दौरान दुर्योधन की सेवा करने के लिए वह बूढ़ा जा नहीं सका, बहुत बुखार आ गया था। तो अपने घर पे बैठकर मन ही मन में सोचने लगा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो दुर्योधन मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार डालेगा, क्या होगा। ऐसे करके ऑफिस में छुट्टी कर दी, ऑफिस में नहीं गए, अर्थात दुर्योधन की सेवा में नहीं गए। परंतु भगवान कृष्ण को याद किया कि कृष्ण अब आप ही मेरी लाज रखेंगे, रखिए। भगवान तो अपने भक्त की सुनते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस बूढ़े का रूप ले लिया और उस बूढ़े का रूप लेकर दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन के चरण भगवान श्री कृष्ण ने दबाए अपने भक्त के खाते। महाभारत में वर्णन है, उस दिन दुर्योधन ने कहा कि अरे सेवक, आपके हाथों में आज इतना आनंद क्यों आ रहा है? आज तक आप मेरा पांव दबाते थे तो इतना आनंद नहीं आता था, आज इतना आनंद मुझे क्यों आ रहा है? अरे मूर्ख, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ तेरा पांव दबा रहा है, आनंद नहीं आएगा तो क्या आएगा? तात्पर्य यह है, अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। यहां पर अपने भक्त के लिए भगवान बंध गए हैं। वक्त्रम निनीय भव भावन यास सितिस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति। और भगवान जब आप ऐसी लीला करते हो तो विमोह यति, संसार के जो मूर्ख हैं, मूट हैं, वो लोग विमोह मोहित हो जाते हैं। मोहित ही नहीं, विशेष रूपेण मोहित, वे लोग आपको समझ नहीं सकते। भगवान गोकुल में चोरी करते हैं, इस प्रकार यशोदा माता के हाथों से बनते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान सबको दुखी करते हैं। अब क्या बताएं आपको, मूर्खता की भी हद होती है। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कृष्ण हमारे भी भगवान बनेंगे, तो हम कहते हैं आज कहाँ है, आज आपके भगवान नहीं है। तो वे लोग कहते नहीं, हमारे भगवान कृष्ण बनेंगे परंतु आज वो नरक में है। अरे मूर्ख कहेंगे, यदि उसे पूछा जाए नरक में क्यों है तो वे कहते हैं क्योंकि गोकुल में बहुत चोरी की थी ना, इसलिए उसे नरक में डाल दिया गया। भक्तों कल्पना करो कि क्या कृष्ण किसी के घर पर चोरी करते तो कोई दुखी होता? अरे वो तो कृष्ण प्रकट की बात छोड़ दीजिए, आज यदि कोई कृष्ण की मूर्ति को मक्खन का भोग लगाए और वो मक्खन यदि खाली हो जाए तो व्यक्ति दुखी होगा कि सुखी होगा? कृष्ण की एक प्रतिमा यदि मक्खन खा ले तो भी हम सुखी होंगे। साक्षात कृष्ण जिसके घर पर जाकर मक्खन खाते होंगे तो व्यक्ति कितना सुखी होता होगा। वास्तव में गोकुल के लोग कृष्ण की शिकायत करने के लिए नहीं, उनका दर्शन करने के लिए उनके घर पर आते थे। कृष्ण कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। परंतु मूर्ख लोग भगवान की ऐसी लीला को देखकर विमोह यति मोहित हो जाते हैं, महारानी कुंती कहती है। अब महारानी कुंती अपनी प्रार्थना का पहलू बदल रही है। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न होता है कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? भगवान इस संसार में भिन्न भिन्न अवतार लेकर क्यों प्रकट होते हैं? तो महारानी कुंती अब कई श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम पर आने का, अवतार लेने का प्रयोजन बता रही हैं। महारानी कुंती बहुत बहुत प्रयोजन बता रही हैं। कहते हैं ये लोगों का मत ये है, कुछ लोगों का मत ऐसा है, कुछ लोगों का मत ऐसा है। इसका अर्थ यह है कि महारानी कुंती ने कृष्ण के बारे में बहुत लोगों से सुना था, नारद मुनि, वेद व्यास जी, दुर्वासा जी, अगस्त्य जी, कुंभज ऋषि, ये सभी ऋषि मुनियों के मुखों से महारानी कुंती ने कृष्ण के बारे में बहुत सुना था। इसलिए अब महारानी कुंती कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं, इसका वर्णन कर रही है। सबसे पहले कह रही हैं के चिदाहूरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववा यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम।
सबसे पहले महारानी कुंती कहते हैं केचित। केचित का अर्थ होता है कुछ लोग। कुछ लोग का मानना यह है केचित आहु अजम जातम। हे कृष्ण, कुछ लोग का कहना है कि आप अजम, आपका जन्म होता ही नहीं है, आप आते ही नहीं हो। केचित आहु अजम जातम। और केचित कुछ लोगों का कहना है जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। कुछ लोगों का कहना है कि आप इस संसार में रहने वाले आपके भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आते हो। वैकुंठ में रहकर आप जो काम नहीं कर सकते हो वह कार्य करने के लिए आप इस जगत में आते हो। वास्तव में कुछ कार्य ऐसे हैं जो भगवान वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी एक समय की बात, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण का सम्मान करती हैं 2400 घंटे। एक समय की बात, क्षीर सागर का एक कछुआ तैरते 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 भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए आया, प्रणाम करने के लिए। जैसे ही वह कछुआ उस समुद्र से बाहर निकला चरण स्पर्श करने के लिए, लक्ष्मी जी ने उसे हटा दिया। फिर से वह कछुआ आया तो फिर से हटा दिया। बहुत बार उस कछुए ने प्रयास किया भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए, परंतु लक्ष्मी जी ने उसे स्पर्श नहीं करने दिया। तब उस कछुए ने कहा कि अपनी गली में हो इसलिए मुझे स्पर्श नहीं करने दे रहे हो, परंतु जब आप मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आओगे तब चरण स्पर्श नहीं करूंगा, आपके चरण को धोकर उस जल को पी जाऊंगा। और भक्तों, संतों का मानना है कि वही कछुआ त्रेता युग में केवट के रूप में जन्म लिया, जो जिसका काम नाव चलाना था। केवट के रूप में उस कछुए ने जन्म लिया और भगवान श्री विष्णु राम के रूप में इस धराधाम पर जन्म लिए। बहुत सुंदर भगवान ने केवट के ऊपर कृपा की। महारानी कुंती यही कह रही है कि केवट जैसे भक्तों पर कृपा करने के लिए आप आते हो। कथा इस प्रकार से है, भगवान श्री रामचंद्र जब 14 साल के लिए वनवास में गए, सुमंत जी श्रृंगवेरपुर तक भगवान श्री रामचंद्र को छोड़े और उस गंगा नदी के तट पर छोड़कर वे वापस चले गए और भगवान श्री रामचंद्र एक रात के लिए गंगा के तट पर विश्राम किया। सुबह जग कर भगवान श्री रामचंद्र उस गंगा नदी को पार करना चाहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र उस गंगा नदी को पार करना चाहते हैं तो वहां पर गंगा को पार कराने वाले किसी को देखा नहीं। दूर पर एक नाविक नाव लेकर बैठा था। भगवान ने दूर से इशारा किया कि यहां नजदीक आओ, हमें बैठकर उस पार जाना है। भगवान ने बुलाया केवट को, केवट यहां पर आओ, हमें उस पार जाना है। गोस्वामी जी कहते हैं मागी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव को बुलाया, मंगवाया, परंतु केवट नहीं आया। केवट दूर से ही कह दिया मैं नहीं आऊंगा। तब भगवान ने दूर से इशारा किया, क्यों? केवट ने दूर से कहा, भाव यह है कि मागी नाव न केवट आना, चरण कमल रज कहूं सब हूं कहीं। भगवान श्री रामचंद्र ने नाव मगाई। केवट ने दूर से ही कहा कि प्रभु आप में कुछ तकलीफ नहीं है, आपके शरीर में भी कुछ तकलीफ नहीं है, आपके चरण में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आपके चरण के नीचे जो रज लगी हुई है उस रज में बहुत तकलीफ है। भगवान ने कहा जरे करीब तो आओ, करीब आकर बात करो। भगवान ने कहा बोलो क्या है। तब केवट ने कहा कि सब लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि एक बार आप रास्ते से जा रहे थे, किसी शिला के ऊपर आपने अपना पांव रखा तो वह शिला नारी बन गई। प्रभु क्या कहूं, वह तो पत्थर था, वह तो पत्थर की शिला थी, मेरी नाव तो काठ की है, लकड़े की है, और आप यदि मेरी नाव के ऊपर अपना चरण रखोगे तो यह तुरंत नारी बन जाएगी। प्रभु मेरा बिजनेस, मेरा धंधा इस नाव से चलता है, इसी नाव से मैं मेरे पुत्र पुत्र और पत्नी का भरण पोषण करता हूं, और आपने यदि इस नाव को स्त्री बना दिया तो मैं भूखे मर जाऊंगा। क्या बताऊं प्रभु, एक तो एक पत्नी को लेकर ही इतना दुखी हूं, और इस नाव को दूसरी पत्नी बना दी तो कहां जाऊंगा मैं। इसलिए प्रभु नाव में बैठने की बात मत कीजिए, और कुछ हो तो बताइए। भगवान ने कहा कि और कोई उपाय नहीं है वहां जाने का। केवट ने कहा नहीं। अब लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र के साथ साथ थे, शेष के अवतार, वो तो इतना क्रोधित हो रहे थे, ये बाण निकालू और इसे मार डालू। केवट देख लिए, केवट ने कहा कि ये लक्ष्मण बाण निकाल रहे हैं, भले वे मुझे बाण मार दे, मैं राम के चरण की सौगंध खाकर कहता हूं कि प्रभु जब तक आपके चरण को नहीं धोऊंगा तब तक आपको उस पार नहीं लेकर जाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोही राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो, मोही राम दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मान हूँ लखनऊ पे जब लगिन पाय पकारी हो, बरु तीर मारू लखनऊ पे जब लगिन पाव पकारी, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारम उतारी हो, तब लगिन दास नाथ कृपाल पार उतार हो। केवट ने कहा कि प्रभु यदि आपको उस पार जाना है तो अपने चरण को धोने दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, चरण धोना है तो केवट धो लो, परंतु जल्दी करो। केवट ने कहा कि प्रभु आप एक मिनट खड़े रहिए, मैं घर से जरा पात्र और जल लेकर आता हूं। केवट दौड़कर घर पर गया और लकड़े का पात्र लेकर और पानी का जग लेकर भगवान के पास आया। आचार्यगण कहते हैं केवट लकड़े का पात्र क्यों लाया। केवट को अभी भी संशय था कि यदि राम के चरण से मेरी नौका स्त्री बन गई तो बहुत फजीहत में फंस जाऊंगा, इसलिए लकड़े के पात्र में पहले अनुभव कर लेता हूं कि ये स्त्री बनती है कि नहीं। लकड़े का पात्र लाया और भगवान के चरण को बहुत प्रेम से धोया। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जिसका एक बार नाम लेकर इस भवसागर को पार किया जा सकता है वह प्रभु, वह नाम वाले भगवान श्री रामचंद्र एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए केवट के चरणों में बैठे हैं। अद्भुत भगवान की लीला है। जिस भगवान ने दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया वह भगवान छोटी सी नदी को पार करने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। केवट भगवान श्री रामचंद्र का के चरण धोने लगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, गोस्वामी जी कहते हैं केवट के हृदय में बहुत आनंद उमड़ रहा है। क्यों नहीं उमड़ रहा, साक्षात भगवान के चरण जो धोने मिल रहे हैं। केवट ने भगवान के चरण धोए, भगवान को कहा कि प्रभु आप एक मिनट खड़े रहिए। केवट दौड़कर घर पर गया, अपनी पत्नी और तीन चार बच्चों को लेकर आया। पत्नी को कहा चलो आप धो, सभी बच्चों को कहा आप भी धो, सबके द्वारा भगवान के चरण धुलवा दिए और भगवान के चरण को धोकर भगवान के ही सामने उस जल को केवट पिया, अपनी पत्नी को पिलाया और बच्चों को पिला दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट भगवान श्री रामचंद्र को नदी के उस पार कराए, उसके पहले तो अपने कुटुंब के साथ भवसागर को पार हो गया। और उस समय जब केवट भगवान के उस चरणोदक जल को पी रहा था, तब स्वर्ग से देवतागण फूलों की वृष्टि करने लगे, अपने मन ही मन को धिक्कारने लगे कि इतने पढ़े लिखे हम देवता, इतने इतने पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त किए, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। परंतु यह केवट अनपढ़ गवार जो लिखना भी नहीं जानता है, कभी स्कूल में नहीं गया है, अनपढ़ गवार केवट भगवान के चरण को प्राप्त कर लिया और उनके चरणों दब को पी लिया। धन्य है केवट। इस प्रकार से केवट ने भगवान श्री रामचंद्र के चरण धोए। बाद में केवट भगवान को कहता है, प्रभु अब आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। भगवान ने कहा कि देखो ये बात नहीं हुई थी, हमारी बात केवल चरण धोने की हुई थी। केवट ने कहा आपकी मर्जी, यदि आप चलोगे तो फिर से आपके चरण में रज लग जाएगी, तो फिर से आपका चरण धोना पड़ेगा और फिर से हमें पीना पड़ेगा। इसलिए आप एक काम करो, आपका चरण हमने धो दिया है, आप कंधे पर बैठ जाओ, मैं डायरेक्ट आपको नाव में बिठा दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो यह भी कर लो। केवट ने भगवान को अपने कंधे पर बिठाया और भगवान को उठाकर जो प्रभु समस्त ब्रह्मांडों का भार उठाते हैं उसको केवट ने अपने कंधे पर उठा लिया और उठाकर नाव में बिठाया। सीता मैया नाव में बैठी, लखनलाल भी बैठे और केवट नाव को चलाने लगा। अब यदि केवट सीधा सीधा नाव को चलाता तो 2 मिनट में उस पार पहुंच जाते, परंतु केवट सीधा सीधा नहीं गया, उस नाव को उस नदी के बीच में घुमाने लगा धीरे धीरे धीरे। आधा घंटा हो गया, लक्ष्मण जी बाण निकालने लगे, ये क्या कर रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मण रहने दो, अब ये काम मत करो। भगवान ने कहा कि केवट अब जल्दी भी करो, क्यों यहाँ नदी के बीच में चक्कर कटवा रहे हो। केवट ने कहा बस प्रभु 2-3 चक्कर में ही आप थक गए प्रभु, यह जीव 84 लाख के चक्कर से घूम कर आया है, आप 2-4 चक्कर में थक गए तो हम 84 लाख के चक्कर में नहीं थके होंगे। प्रभु आप थके हो उससे ज्यादा हम थक गए हैं, कृपया करके इस 84 लाख के चक्कर से हमें भी मुक्त कर दीजिए। इतना कहकर केवट धीरे धीरे उस अपनी नाव को गंगा के तट पर लाया। भगवान श्री केवट सबसे पहले केवट उतरे और अपना हाथ देकर भगवान को उतारा, भगवान ने सीता जी को उतारा और लखनलाल भी उतरे। तब भगवान मन ही मन सोच रहे थे कि केवट ने हमारा इतना काम किया है, यहाँ से वहां छोड़ा है, तो उसे कुछ रेंट कुछ भाड़ा कुछ उतराए देनी होगी। परंतु भगवान के पास कुछ नहीं था, तपस्वियों के वेश में निकले थे और सीता जी भी जब तपस्वियों का वेश धारण किया तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सीते, कई कई ने राम के लिए तपस्वियों के वेश में जाने के लिए कहा है, आपको नहीं कहा है, इसलिए आप राजघराने के श्रृंगार के साथ जाओगी। इसलिए सीता जी ने बहुत सुंदर अलंकार धारण किया हुआ था। भगवान ने मन ही मन में सोचा कि केवट को कुछ देना चाहिए। सीता जी ने अपने पति राम की मन की बात को जान ली और अपने पति के मन की बात को जानकर सीता जी ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर किसी को पता न चले पीछे से भगवान के हाथ में थमा दी। सीखना चाहिए स्त्रियों को, माताओं को इसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि पति यदि दान करता हो तो उसमें मदद करनी चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि माताएं धन एकत्रित करती हैं, वास्तव में धन पति का ही होता है, परंतु कैसे भी करके धीरे धीरे करके धन एकत्रित करती है, परंतु पति का धन ही पति को नहीं देती। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि पति देव दान करते हैं तो पत्नियां डांटती हैं कि हमें साड़ी नहीं लेकर देते हो, हमें गहने नहीं लेकर देते और दान करते रहते हो। परंतु सीता जी से यह सीखना चाहिए कि पति यदि धर्म कर्म में लगे हो तो उसमें सहायता होनी चाहिए, केवल माताओं को ही नहीं सीखना है, प्रभु को भी सीखना है। देखिए भगवान केवट को कुछ देने के लिए सोच रहे हैं, यद्यपि भगवान को देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान इस सिद्धांत को स्थापित किए कि हम किसी से कुछ काम करवाते हैं तो उसकी मेहनत का फल हमें देना पड़ता है। कभी कभी होता है हम किसी रिक्शा से उतरते हैं, रिक्शा वाला पैसा लेना भूल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं और सब्जी वाला बेचारा पैसा लेना भूल गया तो बहुत खुशी होती है कि मुफ्त में काम बन गया। शास्त्र का सिद्धांत है कि यदि इस जन्म में हम किसी का पैसा नहीं चुकाएंगे, भले कितनी भी भक्ति क्यों न करते हो, उसका पैसा चुकाने के लिए फिर से इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी से फ्री में काम नहीं निकालना चाहिए, जो भी जिसने जितनी भी मेहनत की है उसका फल उसे अवश्य देना चाहिए। भगवान केवट को उतराई देना चाहे, केवट को कहा कि आप ये रखिए। तब केवट ने कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो, ये आप मुझे क्या दे रहे हो? केवट ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये उतराई। भगवान ने कहा, नहीं नहीं केवट ले लो। तब केवट भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे ये तुच्छ उतराई दे रहे हो, आज मैंने क्या नहीं प्राप्त किया? जन्मों जन्म की मेहनत, कई जन्म जन्मांतर से जो मैं मेहनत करके आया हूँ, वे सभी मेहनत का फल प्रभु आपका दर्शन है, आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपके चरण पखारे और उस चरणों तक जल दिया, मुझे क्या चाहिए? केवट भगवान से प्रार्थना करता है,
नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
नाथ आज मैं पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख तारी ददावा।
नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष,
आज मैंने क्या प्राप्त नहीं किया? जीवन के सभी दोष मिट गए, जीवन के सभी दुख नष्ट हो गए, आज मैं परम सुखी हो गया। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दिन बीते बनी भली भूरी।
बहुत काल में मजूरी।
प्रभु बहुत काल से मजूरी कर रहा हूँ, बहुत बहुत काल से मेहनत कर रहा हूँ, ये सभी जन्मों की मजूरी का फल प्रभु आज मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना ही है तो कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, भजन कर सकूं।
अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
अब कछु नाथन चाहिए मोरे,
हे गति बार मोही जो कछु देवा सो प्रसाद में शिर धर ले देवा तो प्रसाद में शिर धर लेवा
रती बार मोही जो कछ देवा तो प्रसाद में शिर धर लेवा
बहुत कीन प्रभु लखन सिय कछ के वटुले
बहुत
बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटुले
बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटुले
विदा कीन करुणा तनय भक्ति विमल कर दे नाथ राज में काहुन पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा
इस प्रकार भगवान ने बहुत बहुत केवट को कहा कि उतराए ले लीजिए परंतु केवट ने लिया नहीं। वास्तव में भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, वे भगवान को चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उस वक्त लक्ष्मण ने भी कहा कि अरे भाई ले लेना, अभी क्या होगा, बहुत लेट हो रहा है, हमें जाना है। सीता जी ने भी कहा, लक्ष्मण ने भी कहा, राम ने भी कहा, फिर भी केवट ने नहीं लिया। और केवट ने कहा कि प्रभु यदि आपको कुछ देना ही है तो फिर ती बार मोहि जो कछु देवा सो प्रसाद में सिर धरी देवा। 14 साल के बाद जब आप वापस लौटोगे तो आप अपना दर्शन दे देना, बस यही मुझे चाहिए। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भगवान के भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं। एक बार तो दर्शन कर लिए, अब दूसरी बार दर्शन करने का वादा भगवान से ले लिया। और केवट के ऊपर भगवान ने कृपा की और भगवान वहां से चले। महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु केचिद आहु अजम जातम, आप इस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा देने के लिए इस संसार में अवतरित होते हो। और पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, भगवान का इस धराधाम पर जन्म लेने का दूसरा कारण बताती है कि आप पुण्य श्लोक अर्थात युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। वास्तव में भगवान इस संसार में अपनी कीर्ति बढ़ाने नहीं आते हैं, भगवान इस संसार में अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, युधिष्ठिर महाराज के मित्र हुए तो महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ी। वास्तव में एक व्यक्ति की कीर्ति उसमें है कि वह कृष्ण का भजन करे। जो लोग भगवान का भजन करते हैं उसी की कीर्ति होती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि रामानंद इस संसार में सबसे बड़ी कीर्ति क्या है, कीर्ति मध्य सभी कीर्तियों में कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान की ही शक्ति, भगवान की ही कृपा से वे उत्तर देते हैं। वैसे तो इस संसार में बहुत बड़ी बड़ी कीर्तियां हैं, कीर्ति अर्थात नाम हो जाना, यश हो जाना, जैसे बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाना या बहुत बड़े डॉक्टर बन जाना या वकील बन जाना, परंतु यह कीर्ति कब तक टिकती है, इस जीवन में ही कुछ साल तक टिकती है और बाद में वह कीर्ति वह नाम यश चला जाता है। और मान लीजिए कितनी भी मेहनत करके यदि डॉक्टर भी बन भी गए तो व्यक्ति डॉक्टर कितने साल तक, आधा जीवन तो डॉक्टर बनने में चला जाता है और फिर 30-40 वर्ष तक वे डॉक्टर बना रहता है। यदि मृत्यु हो गई तो दूसरे जन्म में गधा बनेगा, उसकी कीर्ति केवल 40-50 साल के लिए रही। ऐसी नहीं, जन्म जन्मांतर तक जब तक आत्मा है तब तक रहने वाली कीर्ति कौन सी है? तब कहते हैं कृष्ण भक्त बलिया। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाना, गले में कंठी और भाल में तिलक धारण कर लेना और मुख पर भगवान का महामंत्र आ जाना, ऐसी भक्त की कीर्ति युग युग तक अमर रहती है। युग युगांतर तक, कल्प बीत जाते हैं परंतु ऐसे भक्तों की कीर्ति बीतती नहीं है। इसलिए हमारे गुजरात के एक भक्त ने बहुत सुंदर दुहा कहा है, नदे साध क्यों नाथ जी, मैं भूल रहा हूं परंतु वो बहुत सुंदर कहते हैं कि संसार में एक दीवार के ऊपर यदि कोई चित्र बनाया जाए तो जब दीवार पड़ जाती है उसके साथ साथ वो चित्र भी पड़ जाता है। वैसे इस देह से किए हुए जो साधारण कर्म है इस देह के साथ ही गिर जाते हैं, परंतु इस देह के द्वारा यदि कोई भक्ति भजन करता है तो उस भजन भक्ति की कीर्ति युग युग तक अमर रहती है। प्रहलाद महाराज इस पृथ्वी पर आ गए, कल्प बीत गया, हजारों हजारों चतुर्युग बीत गए, परंतु आज भी लोग प्रहलाद महाराज को याद करते हैं। ये सब बात छोड़ दीजिए, आज यदि पूछा जाए हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में पूछा जाए कि पोरबंदर किसका है, तो अपनी जुबान पर एक ही नाम आएगा, पोरबंदर सुदामा का पोरबंदर है। मेवाड़ में बहुत राणा आए और राजा राज करके चले गए, परंतु या आज पूछा जाए कि मेवाड़ किसका है तो एक ही उत्तर आएगा कि मीराबाई का मेवाड़। यदि पूछा जाए कि जूनागढ़ किसका है, एक से एक राजा महाराजा जूनागढ़ पर राज करके चले गए, परंतु आज यदि पूछा जाए कि जूनागढ़ किसका तो नरसिंह मेहता का जूनागढ़। नरसिंह मेहता को याद करे और हुंडी न हो।
मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्याम खीरदारी,
मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्याम खीरदारी,
मने एक तमारो आधार रे श्याम बोली मीरा के रे का जरना कटोरा राणे मुकला रे, हे वालो जरना जारण मार दे श्यामला बेटी बड़ा भी यारे
केचिदाहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये प्रभु। आप इस संसार में अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लेते हैं। भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज की बढ़ाई। कितनी बढ़ाई आगे आपने सप्तम अध्याय में श्रवण किया, युधिष्ठिर महाराज के द्वारा भगवान ने 3 अश्वमेघ कराए तो उनकी ख्याति कितनी हुई, 100 अश्वमेघ करने जैसे। तो केचित कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लेते हो। यदो प्रियस्यान वाये मलय सेव चंदनम। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप यदु महाराज के वंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए, यदु महाराज को सौभाग्य देने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हो। वास्तव में भगवान जब यदु महाराज के कुल में जन्म लिए, यदु वंश में जन्म लिए, तो यदु महाराज की कीर्ति इतनी बढ़ गई जितनी सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते हैं, जितनी मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन की कीर्ति होती है। जैसे यदि आप चंदन कई दुकानों से खरीदो, किसी को अनुभव होगा तो दुकानदार कहेगा कि यह मलय पर्वत का चंदन है, क्योंकि मलय पर्वत पर बहुत अच्छा चंदन होता है। तो जैसे वह चंदन को देखकर मलय पर्वत याद आ जाता है, यद्यपि मलय पर्वत दुकान में नहीं है, परंतु चंदन को देखकर मलय पर्वत याद आ जाता है, वैसे ही कृष्ण को याद करते ही यदु वंश याद आ जाता है। प्रभु आप यदु वंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए, यदु महाराज को सौभाग्य देने के लिए इस संसार में जन्म लिए। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोप्यगात। प्रभु केचित कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप वसुदेव और देवकी की तपस्या से इस संसार में जन्म लिए हो। वसुदेव और देवकी अगले जन्म में अदिति और कश्यप थे, और उसके अगले जन्म में प्रिश्नी और सुतपा थे। उन्होंने देवताओं के 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी और भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए थे, तब इन्होंने भगवान जैसे ही एक पुत्र की कामना की। भगवान ने तथास्तु कह दिया, फिर भगवान को पता चला कि मेरे जैसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए भगवान को स्वयं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आना पड़ा। तो केचित कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अपरे वसुदेवस्य देवकाम याचितोप्यगात। कुछ लोग कहते हैं कि आप देवकी और वसुदेव की तपस्या से जन्म लिए हो, और कुछ लोग अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। सूर का अर्थ होता है देवता, और द्विषाम का अर्थ होता है द्वेष करना। सुरद्विषाम का अर्थ होता है जो सूरों से, देवताओं से द्वेष करते हैं, ऐसे असुर। प्रभु कुछ लोग आपको देवताओं के जो शत्रु हैं असुर, उस असुरों से देवताओं का कल्याण करने के लिए, देवताओं को सुख देने के लिए आप जन्म लिए हो, ऐसा कहते हैं। और प्रभु केचित कुछ लोग भारावतारण्याण्ये भुवो नाव इवो दधो सिदंत्या भूरी भारेण जातो यात्म भुवार्थिक। और कुछ लोग कहते हैं, आपके जन्म का कारण बताते हैं, क्योंकि द्वापर युग में पृथ्वी पाप से भारी हो चुकी थी। वास्तव में पृथ्वी पर बहुत बहुत वजन है, पहाड़ पर्वत बिल्डिंग नदी नाले मनुष्यों का जीवों का, परंतु पृथ्वी को वजन नहीं लगता है। परंतु यदि कोई पृथ्वी पर रहकर पाप करे तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। महाभारत के उस यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्न उत्तर में एक प्रश्न यह था कि इस पृथ्वी पर सबसे भारी वस्तु कौन सी है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पाप भूमि से भारी, पाप जो है इस पृथ्वी पर सबसे भारी है। तो कई ऐसे राजा आसुरी वृत्ति के हो गए थे और इस संसार में पाप करने लगे थे उस पाप के भार को दूर करने के लिए। अच्छा, जब पृथ्वी पर पाप होने लगा तब पृथ्वी की स्थिति क्या हुई? कहते हैं नाव भुवो नाव इवो ददो, पृथ्वी की स्थिति जैसे पानी में नाव होती है वैसी हो गई। पानी में किसी नाव को खड़ा कर दिया जाए और एक व्यक्ति आगे पीछे हिलने लगे तो पानी की नाव डोलने लगती है। तो असुरों के पाप के कारण यह पृथ्वी डोलने लगी थी, इसलिए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, क्योंकि भगवान पृथ्वी के पति है, उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि आपने पृथ्वी का रक्षण करने के लिए, पृथ्वी को, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए इस संसार में जन्म लिया। वास्तव में इस पृथ्वी पर भार यदि किसी का है तो वो है अभक्तों का। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, माता पृथ्वी ऐसे लोगों को उठाकर बहुत दुखी होती है। ऐशान विद्यान तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता। इस भूमि पर भार कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। तो ऐसे भार को दूर करने के लिए भगवान इस संसार में अवतरित हुए। आगे महारानी कुंती कहती हैं, भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम विद्या कर्म कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणी करिष्यन्ति केचन। केचन का अर्थ होता है कुछ लोग। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आप इस संसार में जीवो दुखी जीवों को सुखी करने के लिए आए हो, जन्म लेते हो। संसार के लोग दुखी कैसे होते हैं? तो कहते हैं अविद्या। अविद्या के कारण इस संसार के लोग बहुत दुखी होते हैं। और अविद्या का अर्थ श्रीपाद छिद्र स्वामी कहते हैं स्वरूप अज्ञानम। जिसे अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं होता है उसे अविद्या कहा जाता है। प्रायः इस संसार में सब लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही लोग दुखी हैं। अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा का दास है। तो हम यह स्वरूप भूल गए हैं, हम वास्तव में कौन है यह भूल गए हैं, इसलिए हमें माया के डंडे पड़ रहे हैं। मैं प्रायः दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए कोई स्टेशन पर खड़ा है, प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और वे अपने स्वरूप को भूल जाए, अपने स्थूल स्वरूप को भूल जाए कि मैं लड़की हूं कि लड़का हूं। कोई लड़का अपने स्वरूप को भूलकर अपने आप को लड़की समझ बैठे और लेडीज डिब्बे में चढ़ जाए तो फिर क्या होगा? पुलिस के द्वारा उसकी पिटाई होगी। वैसे यदि कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार में कर्म करता है तो माया के द्वारा बहुत डंडे मिलते हैं, दुख मिलता है। तो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूला हुआ है और अपने स्वरूप को भूलने के कारण, अपने स्वरूप को भूलने को ही अविद्या कहा जाता है और अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही उसमें काम उत्पन्न होता है। अविद्या काम कर्म भी। व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर हूं। और जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं ये शरीर हूं तो फिर उसको काम उत्पन्न होता है कि इस शरीर से मुझे विवाह करना चाहिए, इस शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। कामना प्रकट होती है और जब कामना प्रकट होती है तब व्यक्ति कर्म करने लगता है। अविद्या काम कर्म भी। और जब व्यक्ति कर्म करने लगता है तो उसमें अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों होता है। तो प्राय लोग बुरा कर्म करते हैं इसलिए क्लेश माना नाम, इसलिए संसार के लोग दुखी होते हैं। तो भवेस्मिन, इस भव में, इस जगत में अविद्या काम कर्म भी क्लेश माना नाम, अविद्या काम और कर्म के कारण जीव क्लेश में है, दुखी है। तो वास्तव में अविद्या के कारण, अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही जगत में सब लोग दुखी हैं। आचार्य गण दृष्टांत देकर समझाते हैं, जब व्यक्ति स्वप्न में होता है, जब व्यक्ति स्वप्न देखता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। वह व्यक्ति, मान लीजिए कभी कभी ऐसा स्वप्न आता है कि मैं इस दुनिया का राजा बन गया हूं, और सुबह उठकर पता चला एक खोली के भी राजा नहीं है। स्वप्न में व्यक्ति अपना मूल स्वरूप भूल जाता है। कभी कभी ऐसा स्वप्न आता है, अब मैंने तो नहीं देखा है परंतु कई लोगों से सुना है कि किसी ने उसका गला काट दिया, गला कट गया है फिर भी वह देखते देखते रो रहा है, तो वह स्वप्न में बहुत दुखी होता है, दुख का अनुभव होता है। लेकिन कब तक दुख का अनुभव होता है? जब तक वह स्वप्न से बाहर न आ जाए, जग न जाए। और जग कर जब पता चले कि अरे बाप रे बाप, मैं वह नहीं, मैं तो यह भाई हूं, तब शांति होती है, वह तो झूठ था, यह सत्य है। तो व्यक्ति को दुख कब तक होता है? जब तक स्वप्न है तब तक। जैसे ही वह स्वप्न हम भूल जाते हैं या हम समझ लेते हैं कि वास्तव में वह स्वप्न था, वास्तविक में हम वह नहीं, हम तो यह है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी एक स्वप्न है। इस जीवन को समझने के लिए स्वप्न बहुत बड़ा दृष्टांत है। यह जीवन भी एक स्वप्न है और हम यह एक स्वप्न में जी रहे हैं। वास्तव में वास्तविक जीवन यह नहीं है हमारा, और यह जो शरीर प्राप्त हुआ है वह भी हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। तो जब तक हमें हमारी वास्तविक पहचान नहीं मिलेगी, जब तक यह जीवन रूपी स्वप्न से हम जगेंगे नहीं, तब तक हम दुख से दूर होंगे नहीं। भक्तों, हम सब स्वप्न में हैं। हम सोचते हैं कि मैं यह सेठ हूं, मैं यह मालिक हूं, मैं यह भाई हूं, यह सब स्वप्न में है, यह सब स्वप्न है। वास्तव में हमारी पहचान क्या है? हम आत्मा है, मैं आत्मा हूं। जो लोग यह मानते हैं कि मैं आत्मा हूं, उसका स्वप्न उड़ गया है, उसकी नींद उड़ गई है। और जो लोग अभी भी यह सोचकर बैठे हैं कि मैं यह बहन हूं, मैं यह भाई हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका बॉस हूं, मैं इसका सेठ हूं, ये सब लोग स्वप्न में हैं, सब लोग नींद में हैं। तो ऐसे नींद में पड़े हुए लोगों को जगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं और जीव जागो गोरा चांद बोले। भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं कि अपने स्वप्न से जगो। दोनों प्रकार की नींद के लिए कह रहे हैं कि सुबह हम सोते हैं उस नींद से भी जगो, और उस नींद से जगकर जो दूसरी नींद है, वो दूसरी नींद क्या है? हम अपने आप को सेठ मालिक इत्यादि मानते हैं, उस नींद से भी जग जाओ। इसलिए कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहां सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कहते हैं कि जो सोता रहेगा, जो इसी सपने में पड़ा रहेगा, वो इस मनुष्य देह को खो देगा, परंतु जो जग जाएगा वह इस संसार की सर्वोच्च संपत्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा। तो महारानी कुंती कह रही है कि संसार में सब लोग अविद्या में फंसे हुए हैं और अविद्या के कारण काम कर रहे हैं, काम उत्पन्न होता है और काम के कारण कर्म करते हैं और कर्म के कारण ही क्लेश माना नाम संसार के लोग दुखी हो रहे हैं। तो महारानी कुंती कहते हैं कि इस संसार में ऐसे दुखी लोगों के लिए श्रवण स्मरण अरहाणी करिष्यन्ति केचन। कुछ लोग कहते हैं कि संसार के ऐसे दुखी लोगों को श्रवण कराने के लिए, स्मरण कराने के लिए आप इस पृथ्वी पर जन्म लेते हो। महारानी कुंती के कहने का दूसरा भाव यह है कि संसार में जितने भी लोग दुखी हैं, यदि दुख से दूर होना है, हमारे दुख को दूर करना है, तो श्रवण और स्मरण करना होगा। भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करना होगा, कृष्ण लीला का श्रवण और भगवान की लीला और भगवान के नाम का स्मरण करना होगा। भगवान की लीला का स्मरण करके, भगवान की कथा का श्रवण करके ही हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आपका अनुभव अभी ज्वलन प्रमाण आप देख लीजिए, कुछ लोग कितने टेंशन से आए होंगे, कुछ लोग किसी से झगड़ कर आए होंगे, कुछ लोग किसी पर क्रोध करके आए होंगे, परंतु जैसे ही यहां पर बैठे भगवान की कथा प्रारंभ हुई, सब लोग शांत हो गए, सुख मिला, और उसी सुख के कारण नींद आ जाती है। कुछ लोग सो रहे हैं, भाई आज नींद आना यह भी बहुत बड़ी बात है। आज लोग सोने के लिए गोली लिया करते हैं, परंतु हम तो इतना ही कहते हैं, आप गोली मत लो, हमारे प्रवचन में आ जाओ, नींद जरूर आ जाएगी, गारंटी के साथ। असल में भागवत सोने के लिए नहीं है, सोए हुए को जगाने के लिए है। परंतु संसार में व्यक्ति को जब बहुत दुख मिलता है और जब उसे भागवत कथा का संस्पर्श होता है तो बहुत सुख का अनुभव होता है। कैसे? ब्रह्मा जी दृष्टांत देते हैं, जैसे बहुत बड़े दावानल में एक गजराज हाथी फंस जाए, कोई चिड़िया फंसी हो तो उड़कर निकल भी सकती है उस दावानल से, कोई छोटा मोटा प्राणी भी उस दावानल से भागकर निकल सकता है, परंतु बेचारा इतना बड़ा शरीर धारण करने वाला गजराज हाथी बाहर नहीं निकल सकता। वह हाथी चारों ओर से उस दावा अग्नि की, उस अग्नि की लपट से इतना दुखी होता है, इतना जलता है, बहुत दुखी होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन से और आपकी कथा से उतना आनंद आता है जितना उस दावा नल में फंसे हुए हाथी को गंगा नदी का स्पर्श हो जाए। दावा अग्नि में फंसे हुए हाथी को यदि गंगा में स्नान करने के लिए मिल जाए और उस वक्त उसको जितना सुख होता है, उतना सुख इस कलयुग में भगवान की कथा सुनने से होता है। सुख है, आनंद है। तो कलयुग के जीवों, दुखी जीवों को सुखी करने के लिए भगवान इस संसार में जन्म लेते हैं। अच्छा, कलयुग के लोग सुखी कैसे होंगे? तो भगवान इस संसार में जन्म लेंगे, कुछ लीला करेंगे और वह लीला कलयुग के लोग सुनेंगे और स्मरण करेंगे, श्रवण और स्मरण के द्वारा सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो महारानी कुंती ने इस प्रकार से भगवान के अवतार लेने के बहुत कारण बताए। परंतु मान लो भगवान पूछे कि बुआ जी, आपने मेरे जन्म लेने के बहुत कारण बताए, परंतु यह सभी कारणों में से आपको कौन सा कारण अच्छा लगता है? यह सभी कारणों में से आपको सबसे अच्छा कारण कौन सा लगता है? तब महारानी कुंती कहती हैं, सुनवंती गायंती गृणत्य भीक्ष्णस स्मरंती नंदंती तवे हितम जना। प्रभु, वैसे तो आपके जन्म लेने के बहुत बहुत कारण है, परंतु उनमें सर्वोच्च कारण और सर्वश्रेष्ठ कारण क्या है? सर्वश्रेष्ठ कारण यही है कि आप इस संसार में जन्म लेने से संसार के लोग आपकी कथा का और आपके नाम का श्रवण कर सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं। अच्छा, भगवान ने कहा तो मेरी कथा का श्रवण करके और मेरा नाम लेकर क्या होगा? तब महारानी कुंती कहती है कि हे भगवान, जना तवे हितम शणवंती गृणंती और गायंती। हे प्रभु, यदि संसार के लोग आपकी कथा सुने या गृणंती, आपके नाम का कीर्तन करे या गायंती, गायंती का अर्थ होता है गाना, सुनवंती का अर्थ होता है सुनना और गृणंती का अर्थ होता है गुनगुनाना। ये गुनगुनाना, श्रवण और कीर्तन, ये दोनों के बीच की वस्तु है। तो सुनवंती, गायंती और गृणंती, यदि कोई व्यक्ति सुनता है, गाता है और गुनगुनाता है, स्मरण करता है और नंदंती, पांच लोगों की विशेषता बताई है कि आपकी कथा सुनने वाले, आपका नाम लेने वाले, आपकी लीलाओं को गुनगुनाने वाले और स्मरंती आपके नाम और आपकी लीला का स्मरण करने वाले और नंदंती और आपकी कथा का आपकी भक्ति का अभिनंदन करने वाले। अभिनंदन का अर्थ होता है कुछ लोग इस भागवत सप्ताह में आ नहीं सकते हैं परंतु इस भागवत सप्ताह का अभिनंदन करेंगे कि नहीं वहां पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यदि कोई इतना भी कर देता है तो महारानी कुंती कहती हैं तो एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भवत् प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ऐसे लोग तुरंत चिरम देर नहीं लगेगी तुरंत भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों का दर्शन कर पाएंगे। जो लोग आपकी कथा सुनते हैं आपके नाम को गाते हैं और आपकी लीला को गुनगुनाते हैं और आपकी लीला को स्मरण करते हैं और आपके आपकी भक्ति को और आपका अभिनंदन करते हैं ऐसे लोग तुरंत आपके चरणों का दर्शन कर पाते हैं। ये सत्य बात है। कुछ लोग इतने सेवा में रत रहते हैं कि भागवत सुन नहीं सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कुछ लोग इस भागवत का आयोजन करने में इतने पड़े हैं कि अभी भी यहां से वहां कुछ सामान इधर उधर कर रहे होंगे, कुछ माताएं प्रसाद बना रही होगी। ऐसे लोगों के लिए महारानी कुंती कह रहे हैं, वेद व्यास जी लिख रहे हैं क्या कि जो लोग इस कथा का अभिनंदन भी करते हैं, कथा का आयोजन करने में जो जितना सहभागी होता है उसे भगवान के चरणों का निश्चित दर्शन होता है और दर्शन होने में देर नहीं लगती है, कहते हैं चिरम तुरंत भगवान का दर्शन होता है। गोस्वामी भी इस बात को कहते हैं कहही सुनही अनुमोदन करही। भगवान को कौन कौन प्राप्त होते हैं? कहने वाले, सुनने वाले और अनुमोदन करने वाले। परंतु कलयुग के जीवों का इतना दुर्भाग्य है कि वे अनुमोदन भी नहीं कर सकते हैं। भक्ति तो स्वयं कर ही नहीं सकते हैं परंतु भक्ति करने वालों का अनुमोदन भी नहीं कर सकते हैं, उल्टा निंदा करते हैं कि ये लोग गले में कंठी पहनकर निकल पड़े हैं, ये लोग इतना बड़ा बड़ा तिलक करने की क्या जरूरत है। अरे भाई तुम्हारे बाप का उसमें क्या जाता है, तुम्हारे घर से चंदन लेकर आते हैं हम। एक प्रभु कह रहे थे कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये गाजर जितना तिलक आप क्यों करते हो। गाजर जितना करे या गन्ने जितना करे आपको क्या फर्क पड़ता है। मूर्ख लोग अनुमोदन भी नहीं कर सकते थे, आपने तिलक किया है चंदन लगाया बहुत अच्छी बात है। वास्तव में यह तिलक साधारण वस्तु नहीं है, यह तिलक भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान है यह। हमारा ऊर्ध्व पुंड्र, वेद में इस तिलक को ऊर्ध्व पुंड्र कहा गया है। ये जो ऊपर की ओर देखते हो ये भगवान विष्णु का चरण है और बिल्कुल भगवान के चरण के नीचे तुलसी दल है। और यह तिलक जो हम करते हैं ये चंदन है, यह लकड़े का चंदन नहीं। द्वारका में गोपी तलाव में सभी गोपियों ने भगवान की विरह में अपना देह त्याग कर दिया, उनके भगवान के लीला का स्मरण कराने वाला यह गोपी चंदन है। और इसके वैज्ञानिक भी बहुत बहुत कारण है। शास्त्र विज्ञान में कहा गया है कि हमारे शरीर में कई करोड़ नस होती है और यह सारी नस का जो जंक्शन है वह यहां पर होता है। यदि कोई यहां पर चंदन लगाता है या इस चंदन गोपी चंदन का तिलक करता है तो वह सभी नस को आराम मिलता है। आपको अनुभव होगा जब आपने बहुत टेंशन लिया होगा, बहुत सोचा होगा, तब आपको सिर दर्द होता है क्योंकि यह सारी नस का जंक्शन है। और वहीं पर यदि भगवान की स्थापना की जाए तो भगवान निश्चित हमारे शरीर में अच्छे डिसीजन देंगे और हमारी मति को शांत करेंगे। यह तिलक भगवान का प्रतीक है और जो व्यक्ति तिलक करता है वह भगवान का हो जाता है। याद कीजिए वह लीला, भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी कि कृष्ण को मार डालूं। परंतु उस मारने वाली काल के समान पूतना को भी भगवान ने अपनी मां बना लिया। ले वे गतिम धात्री उचिताम तत्व्यम। क्यों प्रश्न उठा कि भगवान ने इतनी बड़ी असुरी को माता क्यों बनाया? तब भगवान ने उस पुतना में एक गुण देखा कि भले वो मुझे मारने के लिए आई है, परंतु जो वस्त्र पहनकर आई है मेरे भक्त का वस्त्र पहना है। गोपी ड्रेस, गले में कंठी और तिलक धारण करके आई है, इस वस्त्र को मान है, इसलिए ये मेरी मां है। भक्तों, भगवान कभी भी तुलसी के अलावा कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। और वास्तव में हमारे शरीर में मांस, मज्जा, मल, मूत्र के अलावा और क्या है? तो ऐसे गंदे देह को भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु इस ऐसे देह के ऊपर कंठी और तिलक लगाया जाए तो भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि ये अपने कंपनी का माल है, इसे आने दो। और जिसके कंठ में कंठी नहीं है और तिलक नहीं है, कहते हैं ये अपने कंपनी का नहीं है, ये यमराज की कंपनी का है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यमराज से बचने के लिए तिलक किया जाता है। कही सुनही अनुमोदन करही। मैं कह रहा था कि कुछ लोग भजन करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कर सकते हैं कि चलो भाई हमसे नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है, तो आप जो कर रहे वो अच्छा है। वह कहते हैं तिलक क्यों करते हो, कंठी क्यों करते हो, और दिन रात भगवान का नाम क्यों लेते रहते हो? परंतु भगवान के भक्तों का जो अनुमोदन करते हैं वह भी एक भक्ति ही है। तुम्हारा महारानी कुंती कहती हैं कि इस प्रकार से भजन करने वाले भगवान तुरंत आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा मेरे चरण प्राप्त करके आपको क्या मिलेगा? मेरे चरण में ऐसा क्या है कि सब लोग मेरे चरण को प्राप्त करना चाहते हैं? तब महारानी कुंती कहते हैं भवत भव प्रवाहो परमम, आपका चरण इस भव सागर से पार कराने वाला है। इस भव सागर में फंसकर सब लोग दुखी हैं, परंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की चरण ग्रहण कर ले, शरण में चला जाए, तो निश्चित वह इस भव सागर से पार हो सकता है। जब महारानी कुंती ने इस प्रकार से कहा, तब आगे महारानी कुंती दैन्य भाव से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु अप्यद्य नस्त्वम स्वकृतोति हिते प्रभो जीहाससी श्री सुहदो नुजीवीन। प्रभु आप रथ पर बैठे हो, क्या आप हमको छोड़कर चले जाओगे? प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान के भक्त कभी भगवान से अलग होना नहीं चाहते हैं। महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें छोड़ देंगे? ऐशान चान्य ध्वत पदाम्बुजात परायणम राजसु योजिता हंसाम। प्रभु आप यदि हमको छोड़कर चले जाओगे तो हमारा और हमारे पुत्रों का क्या होगा? प्रभु इस संसार में अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे विरोध करते हैं। वर्तमान में तो आपने देखा अश्वत्थामा का पुत्र ही, क्षमा कीजिए, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हमको मारने के लिए तुल गया। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पुत्रों के विरोधी हैं। यदि आप चले गए तो हम जीवित नहीं रहेंगे। वास्तव में महारानी कुंती को मरने का डर नहीं था, परंतु महारानी कुंती को भगवान से दूर होने का दुख सता रहा था। कृष्ण आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? वास्तव में कृष्ण के वीरों में क्या दशा होती है यह तो ब्रज वृंदावन में रहने वाली गोपियां ही जानती हैं। कृष्ण जब ब्रज वृंदावन छोड़कर मथुरा में चले गए तो वृंदावन में रहने वाली सभी गोपियां इतनी दुखी हो गई भोजन बंद कर दिया और दिन रात कृष्ण को याद कर करके मर रही थी। एक बार कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ उद्धव और ब्रजवासियों को, ब्रज में रहने वालों को सांत्वना देकर आओ। उद्धव जी गए, जैसे ही उस गोकुल की गलियों में पहुंचे तो ढूंढने लगे नंद और यशोदा कहां रहते हैं। पूछ रहे थे कि नंद बाबा और यशोदा का घर कहां है। तब कुछ गोपियों ने उद्धव जी से रोते रोते कहा कि उद्धव जी नंद और यशोदा का घर ढूंढ रहे हो, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उद्धव जी, ये जो नाला बह रहा है, उस नाले के किनारे किनारे पर चले जाओ। जिस घर से यह नाला निकल रहा है वह घर नंद और यशोदा का है। वह घर नंद और यशोदा का है। तब उद्धव जी ने उस गोपियों को पूछा कि यह नाला है क्या, यह तो बताओ। तब उस गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, जिस दिन से कृष्ण गोकुल को छोड़कर चले गए हैं, उस दिन से नंद और यशोदा के आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं, और नंद और यशोदा के आंसू ही यह नाला बनकर बह रहा है। ये नाला साधारण पानी का नहीं है, ये नाला नंद और यशोदा के अश्रु का है। उद्धव जी जब उस चलते चलते उस नाले के किनारे किनारे नंद और यशोदा के घर पर पहुंचे, और नंद और यशोदा को परमात्मा का ज्ञान दिए, परंतु वो थोड़ी ना समझने वाले थे। वे तो इतना ही कहते थे, कीजिए ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंगनी पे, ब्रज में तिहारी कला नैकु ही खटे नहीं। हे उद्धव जी, आपका यह जो ज्ञान है, बड़े पहाड़ के ऊपर जाकर इस ज्ञान के पोटला को फेंक दो, क्योंकि आपकी कला इस ब्रज में टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि रचना हमारी चारु चात की बनी है उदो, पीपी की बिहाई अब रटू ही रटे नहीं। हमारी रचना, हमारी जीवा चातक के समान हो गई है, केवल कृष्ण के अलावा और किसी को चाहती नहीं। उद्धव जी ने कहा कि आप अपने मन से कृष्ण को निकाल दें। ब्रजवासियों ने कहा, नंद और यशोदा ने कहा कि उद्धव जी, आप जो कर रहे हो हम वह भी कर सकते हैं, वह तब कर सकते हैं जब हमारे पास दो पांच मन हो। क्या करें, परवश है, हमारे पास एक ही मन है और वह मन हम कृष्ण को दे चुके हैं। उद्धव जी, कृष्ण को हम पर तरस नहीं आ रही है, हमारी याद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, परंतु कम से कम इस निर्दोष प्राणियों के ऊपर तो दया लाओ। उद्धव जी को पकड़कर नंद और यशोदा गाय और बछड़े के पास लेकर गए और कहा, उद्धव जी हमारी बात छोड़िए, हम तो दुखी हैं, कृष्ण को हमारी याद नहीं आ रही है, परंतु ये गाय और बछड़े ने जब तक कृष्ण यहां से गए हैं, उसके बाद ये गाय और बछड़े खाना छोड़ दिए हैं। कृष्ण को जाकर कहना उनका नाम गोपाल है, गायों का पालन करने वाला है, और गायों का पालन करने वाला आज गाय को भूल गया। इस प्रकार से ब्रज के लोगों ने कृष्ण के विरह में दुखी होकर उद्धव जी को बहुत संदेश दिया, और उद्धव जी जब जा रहे थे तब गोपियों ने भी जो उद्धव जी को संदेश दिया है शास्त्र में अमर है, और एक भक्त उस संदेश को भागवत के श्लोक को अपने गुजराती के भाव में प्रकट करते हैं। आइए हम भी इस गीत का आस्वादन करें। काना ने मनावो कोई मथुरा मजावो, उद्धव जी काना ने मनावो, काना ने मनावो, रे पुरानी काना भूली रे गया छो,
आय दो या पीने वाला बिसरी गया छो, प्रीत रे पुरानी वाला भूली रे गया,
वाय दो या पीने वाला बिसरी गया छो, प्रीत रे पुरानी काना भूली रे गया छो,
वाय दो या पीने वाला भूली गया छो, प्रीत रे पुरानी काना भूली रे गया,
खूब जान रूप माशू मोही गयो मा काना ने मनाओ, काना ने मनाओ,
काना ने मनाओ, कोई मथुरा मजाओ, ओ देव जी, काना ने मनाओ, काना ने मनाओ।
सभी गोपियां उद्धव जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तो कृष्ण के पास जा नहीं सकती हैं, परंतु आप वहां जाकर कृष्ण को मनाना कि उनके बिना हम रह नहीं सकती।
श्याम रे बिना नु ब्रज सोनूर लागे, गोकुल निगलियो मा भण कारवागे, श्याम रे बिना नु व्रज सोनो रे लागे, गोकुल निगलियो मा भण कारवागे,
श्याम रे बिना नु व्रज सोनो रे लागे, गोकुल निगलियो मा भण कारवागे।
चितड़ु अमारु जंखे श्याम से मिलावो, ओ धव जी, काना ने मनाओ, काना ने मनाओ,
काना ने मनाओ, कोई मथुरा मजाओ, ओ धव जी, काना ने मनाओ, काना ने मनाओ।
नींद न आवे आंखे भोजन न भावे, श्याम ना संभालना तो पल पल सतावे,
नींद आवे भोजन न भावे, श्याम ना संभालना तो पल पल सतावे,
नींद न आवे आंखे भोजन न भावे, श्याम ना संभालना तो पल पल सतावे,
इंद्रा न आवे हमने भोजन भावे, श्याम ना संभालना तो पल पल सतावे,
के मरे रिसाना के जो गुनो शुय मारो, ओ धव जी, काना ने मना, काना ने मनावो,
काना ने मनावो, कोई मथुरा मजाओ, ओ देव जी, काना ने मनावो, काना ने मनावो।
तन नो संदेशो दे जो दुख डार के जो, आठ नीर अर्जी मारा माधव के जो, तन नो संदेशो दे जो दुख डार के जो, आठ नीर अर्जी मारा माधव के जो, पार्षद ननाथ दिल मा दया जरा लावो, ओ धव जी, काना ने मनाओ, काना ने मनाओ,
काना ने मनाओ, कोई मथुरा मजाओ, ओ धव जी, काना ने मनाओ, काना ने मनाओ,
काना ने मनाओ, काना ने
काना ने।
मनाओ।
ब्रज वृंदावन की गोकुल की सब गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कृष्ण को मनाइए। वहां गोपियां मना रही हैं और यहां पर महारानी कुंती कृष्ण से कह रही हैं कि कृष्ण आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, आप यदि चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा। जब इस प्रकार से महारानी कुंती ने कहा तब मानो भगवान कहते हैं ननु तव बांधवो यदव पुत्राश्च पांडवा शुरा सामर्थ्यश्च तत् किम कार्पण्यम भाषसे। हे बुआ जी आप ऐसा क्यों कह रही हो, आपके पुत्र तो बहुत शक्तिशाली है, पांडव तो शूरवीर है और आपके यदुवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, तो इतने बड़े शक्तिशाली पांडव आपके पुत्र हैं और यदुवंश में इतने एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के होते हुए भी आपकी कौन हत्या कर सकता है, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। क्यों? क्योंकि आपके पुत्र और आपके वंश में रहने वाले बहुत 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 वीर रणधीर हैं। जब इस प्रकार से कृष्ण ने कहा तो महारानी कुंती कहती हैं कि प्रभु यद्यपि हम पांडवों में और यदुवंश में शक्ति है परंतु वह शक्ति तब तक है जब तक आप हमारे साथ हो। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि स पांडवा भवतो दर्शनम यहि ऋषि काणाम वेशितु। प्रभु हम पांडवों में और यदुवंश के राजाओं में शक्ति तब तक है जब तक आप हो। किस प्रकार? जैसे इस शरीर में तब तक शक्ति रहती है जब तक आत्मा होती है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से चली जाती है, इस शरीर होते हुए भी यह शरीर काम नहीं करता है। भक्तों यह शरीर 10 तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और इसमें 5 सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा। तो जब आत्मा और परमात्मा इस देह से निकल जाते हैं तो यह देह होते हुए भी यह देह कुछ काम का नहीं है। आत्मा जब निकल जाती है तो आंख होती है, कान होते हैं, हाथ होते हैं, पांव होता है, परंतु वह कुछ काम का नहीं है। जैसे आत्मा के बिना यह शरीर काम का नहीं है प्रभु, वैसे ही आपके बिना हमारे पुत्र पांडव और यह यदुवंश में रहने वाले राजा महाराजा कुछ काम के नहीं है। जैसे आत्मा से इस शरीर को शक्ति मिलती है, वैसे ही प्रभु आप ही से हमारे पुत्र पांडवों को और यदु वंश में रहने वाले राजाओं को शक्ति मिल रही है। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है और वह देह कुछ काम का नहीं रहता है, वैसे ही जैसे ही आप यहां से चले जाओगे तो हम कुछ काम के नहीं रहेंगे। जीवन से भगवान निकल जाते हैं तो यह जीवन कुछ काम नहीं रहता। के वयम, प्रभु आप ही बताइए क्या हम कुछ काम के रहेंगे, कुछ वैल्यू रहेगी हमारी आपके बिना। आगे कहती है नेयम शोभिष्यते तत्र यथे दानिम गदाधर त्वत् पदें किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। प्रभु ये तो हमारी बात है, हम भले मर जाए कट जाए परंतु आप यदि यहां से चलो जाओगे तो इस भूमि का क्या होगा जिस भूमि पर आपके श्री चरण पड़ रहे हैं। प्रभु आप इस भूमि पर चलते हैं तो यह भूमि खुश रहती है, पवित्र रहती है, इस भूमि पर रहने वाले सब लोग सुखी रहते हैं और जैसे ही आप चले जाओगे सब लोग दुखी हो जाएंगे। इमे जनपदा सवृद्धा सुपक्वो औषधि विरुद्ध वनादिनद्यु धनवंतो हे धनते तव विक्षिते। प्रभु जैसे ही आप चले जाओगे तो पेड़ फल देना बंद कर देंगे, समुद्र रत्न देना बंद कर देंगे। प्रभु आपकी अनुपस्थिति में यह भूमि बिल्कुल बलहीन हो जाएगी। प्रभु आप जब यहां पर हो तो देखो कितना सुख है, समुद्र रत्न के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देता है, हस्तिनापुर वालों को केवल लेकर पहनना है। कोई दुखी नहीं है, कोई रोगी नहीं है, सब लोग खुश हैं क्योंकि आप हो। इस बात को गोपिया भी गोपी गीत में स्वीकार करती है, जयति तेदिकम जन्म नाव्रज श्रयत इंदिरा शश्व दत्रही दैत दृश्यताम दिक्षु तावकास त्वई गृतासव त्वाम विचिन्वते। कृष्ण ते अधिकम जयति जन्मना ब्रज, जिस दिन से आपका इस ब्रज वृंदावन में जन्म हुआ है उस दिन से यह वृंदावन अधिकम जयति अधिक जय को अधिक उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है, और जिस दिन से आप जन्म लिए हो उस दिन से श्रयत इंदिरा शश्वत, उस दिन से लक्ष्मी जी शाश्वत यहाँ पर विराजती हैं। भक्तों जहां पर भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी होती है, परंतु संसार के कुछ मूर्ख लोग भगवान को नहीं चाहते हैं लक्ष्मी को चाहते हैं। तो लक्ष्मी हमारी तरह थोड़ी ना है कि किसी के घर पे चली जाएगी, लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री है, अपने पति के साथ ही रहती है, अपने पति के पीछे पीछे ही चलती है। इसलिए यदि आप नारायण की पूजा करोगे कृष्ण की पूजा करोगे तो लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगी। नारायण की कृपा जिस पर है, भगवान की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा उस पर होती ही है। तो प्रभु आप यहाँ पर हो तो सब लोग खुश हैं, आप चले जाओगे तो सब लोग दुखी हो जाएंगे। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में। कुंती महाराज ने कह दिया प्रभु अब आप जाइए मत, परंतु कुंती महाराज के मन में कुछ विचार आया। विचार आया तो कुंती महारानी जो प्रार्थना कर रही थी प्रार्थना के पहलू को ही बदल दिया, प्रार्थना के पहलू को बदल दिया, इसलिए कुंती महारानी को कहना पड़ा अथ। किसी भी शास्त्र को किसी भी कथा को प्रारंभ जब करते हैं तब पहला शब्द अथ होता है, अथ प्रथमो अध्याय, और अंत करने पर इति होता है। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थना को कुछ बदल रही है, अब कुछ अलग सी प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना है? कुंती महारानी कहती है कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशा मिमम छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। हे कृष्ण अब आपको चाहे रहना है तो रहिए, जाना है तो जाइए, मैं कुछ आपको कह नहीं सकती हूं, परंतु अब ये वृष्णि वंश में और यदु वंश में हमारी बहुत आसक्ति है, अर्थात मेरे मैके में जितने भी लोग हैं उसके प्रति मेरी बहुत आसक्ति है, और मेरे पुत्रों में और मेरे स्वजनों में मेरी बहुत आसक्ति है। तो आप मेरे पर कृपा करें और मेरी इस आसक्ति को काट दीजिए। प्रभु आपके सिवा मेरी आसक्ति को कोई नहीं काट सकता है, इसलिए इस श्लोक में भगवान को एक नहीं तीन संबोधन दे रही है। विश्वेश, हे प्रभु आप इस विश्व के ईश हो, नियंता हो। विश्वात्मन, हे प्रभु आप इस विश्व के आत्मा हो, आप इस विश्व के बाहर भी हो अंदर भी हो, साक्षात विश्व की मूर्ति ही हो, इसलिए आप मेरी आसक्ति को काट सकते हो। संसार की आसक्ति को केवल भगवान ही काट सकते हैं। इसलिए महारानी कुंती कहती है कि यदु वंश में जितने भी लोग हैं और विष्णु वंश में मेरे मैके की ओर और मेरा जहां पर विवाह हुआ है जितने जितने लोगों में मेरी आसक्ति है उस सारी आसक्ति को काट दो। जब महारानी कुंती ने ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं कि आप कह रही हो कि यादवों के प्रति भी आसक्ति को काट दू और आपके वंश में जो है उसकी भी आसक्ति को काट दू, तो भगवान कहते हैं मैं भी एक यादव हूं, मेरे प्रति भी जो आपकी आसक्ति है उसे भी मैं काट दूं। तब कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, आपकी आसक्ति काटने के नहीं लिए नहीं कर रहे हूं, आपके अलावा इस संसार के भौतिक संबंधों में जो मेरी आसक्ति है उसे काटो, पर आपके प्रति तो त्वयि मेनन्य विषया मतिर मधु पते सकृत रति मूद्व तात्वद्वा गंगो वोध मुदनवती। प्रभु आपके प्रति तो दिन पर दिन मेरी आसक्ति बढ़ती रहे, ऐसा वरदान ऐसा आशीर्वाद दो। देखिए महारानी कुंती भगवान से क्या कह रही है, मेरी मति दृष्टांत दे रही है जैसे गंगा नदी का प्रवाह होता है, प्रचंड वेग से चलती है। गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगोत्री से निकलकर बड़े से बड़े पहाड़ों को तोड़ती हुई फोड़ती हुई अपने वेग से आगे बढ़ती है। कभी हर की पेड़ी पे जाकर खड़े रहो गंगा के नदी में, हमारी मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, हाथी भी नहीं खड़ा रह सकता है, इतना प्रचंड वेग है। कहते प्रभु मेरी मति गंगा की धारा की समान आप में निश्चल रहे, अनन्य रहे, इतना प्रवाह मेरी भक्ति में हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जैसे नरसिंह मेहता भगवान से मांगते हैं,
शुद्ध भक्ति वदे मारी पुरणी माजे मी,
जैसे गंगा की धारा अजस अविरत गति से बहती रहती है, करोड़ों करोड़ों वर्ष से गंगा बहती है, परंतु आज भी उस गंगा में उतना ही वेग है और कभी भी पानी खाली नहीं हुआ है, ठीक उसी प्रकार मेरी भक्ति दिन भर दिन आप में बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि भवानी धीर, भगवान श्री कृष्ण की इस प्रार्थना में, प्रार्थना का अंत करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हो, आप राजाओं के लिए अग्नि के समान हो, आप पराक्रमशाली हो, आप गोविंद हो, आप असुरों से देवताओं की रक्षा करने वाले हो, आप योग योगेश्वर हो, आप अखिल जगत के गुरु हो, आप साक्षात भगवान हो, ऐसे प्रभु कृष्ण मैं आपके चरणों में नमस्ते प्रणाम करती हूँ। देखे कुंती महाराज ने प्रारंभ किया था नमस्ते त्वाम आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, और अंत कर रही है नमस्ते। कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना नमस्ते प्रणाम से प्रार्थना शुरू की थी और प्रणाम से ही इस प्रार्थना को अंत कर रही है, और अंत में मांग रही है कि प्रभु यदि देना ही है तो दिन भर दिन आपके चरणों में मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से महारानी कुंती की प्रार्थना समाप्त हुई और अंत में सूत गोस्वामी कमेंट्री देते हैं कि पृथ्वी तम कल्पदे परिणुता खिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन नीव मायया। जब प्रथा के द्वारा कुंती के द्वारा यह स्तुति हुई तब भगवान श्री कृष्ण मंदम जहास मंद मंद मुस्कुराए। वास्तव में जीवों के ऊपर भगवान की दो कृपा है, एक तो अपने भक्तों को आलिंगन देना और एक अपने भक्त के सामने मंद मंद मुस्कुराना। तो महारानी कुंती की प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और तत्पश्चात सुध गोस्वामी कहते हैं ताम बाढ़म मित्यु पामंत्र प्रविश्य गज साहिये हम। महारानी कुंती ने जब प्रार्थना समाप्त की तब भगवान ने कहा बाढ़, ठीक है बुआ जी, आप जैसे कहती हो वैसा ही होगा। इतना कह के भगवान श्री कृष्ण उस रथ से नीचे उतर गए और कहने लगे कि हे माते, अब आज के बाद मैं द्वारका नहीं जाऊंगा, मैं हस्तिनापुर में ही रहूंगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हो चुके थे, रथ पर सवार हो चुके थे। सात्यकी और उद्धव जी तैयार थे चलाने के लिए, परंतु महारानी कुंती की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उस रथ से उतर गए। अब मुझे द्वारका नहीं जाना है, अब मैं इस हस्तिनापुर में ही रहूंगा। भक्तों, महारानी कुंती की तरह यदि हम भी भगवान को हमारे घर पर रखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से महारानी कुंती ने भगवान को प्रार्थना की है, वैसी प्रार्थना हमें नित्य निरंतर भगवान को करनी होगी। प्रार्थना का मुख्य पहलू यह है कि महारानी कुंती को विश्वास है कि कृष्ण ही भगवान है। फिर कुंती महारानी भगवान से दुख मांग रही है, और फिर भी यदि भगवान कहते हैं मांगो तो क्या मांग रही है, आपके चरणों में मेरी शुद्ध भक्ति कायम रहे, बढ़ती रहे, यही इस कुंती महारानी की प्रार्थना का सार है। तो इस प्रकार भक्तों, यहाँ पर कुंती महारानी की प्रार्थना समाप्त होती है। और अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में भागवत सुनना और भागवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस ग्रंथों को भगवान कलयुग में शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रकट है, तो हमें भगवान के द्वारा दिए गए इस शास्त्र को पढ़ना चाहिए, पढ़ न सके तो सुनना चाहिए और इसे हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। इस 7 दिन में हमने बहुत बहुत कुछ कहा और आपने बहुत कुछ सुना और आप बहुत कुछ भूल भी गए होंगे, परंतु जब व्यक्ति बहुत कुछ सुनता है और यह सोच लेता है कि ये जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति सार ग्रहण करता है, एसेंस क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति यही कहता है कि 7 दिन कथा हुई, बहुत आनंद आया, सब लोग पवित्र हुए, परंतु अब प्रभु जी यह बता दीजिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कम से कम शब्दों में। क्योंकि महारानी कुंती भगवान के प्रति भक्ति की और भक्ति के द्वारा भगवान वश में हुए, तो हमें भी भक्ति करनी चाहिए। और कुंती महारानी की तरह जिसके पति का निधन हो चुका है, उसे तो आज से ही कुंती महारानी की तरह ठान लेना चाहिए कि बस आज के बाद मेरे पति यदि कोई है तो वह है कृष्ण, और वे ही हमारी रक्षा करेंगे। तो भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रायः लोग भक्ति शब्द सुनकर डर जाते हैं। भक्ति का अर्थ सिंपल है, भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा, एक्टिव डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि बस अब मुंडन करा के सफेद कपड़े पहनकर मंदिर में बैठ जाओ, या जूनागढ़ में चले जाओ, या हरिद्वार में चले जाओ, नहीं। भक्ति का सिंपल अर्थ है, भक्ति का अर्थ है भगवान ने जब यह संसार बनाया तो संसार में रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का निर्माण किया, कुछ यम और नियम बनाए। भगवान के दिए गए यम और नियम का हम पालन करते हैं तो हम भक्त हैं। ठीक वैसे ही जैसे यथा दृष्टांत के अनुसार, यदि आपको इस देश का अच्छा नागरिक बनना है तो अच्छा नागरिक बनने के लिए सबको वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है, सब पुलिस वाले बन जाए, नहीं। इस देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए इस देश की गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशन, यम और नियम यदि हम पालन करते तो अच्छे नागरिक है। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, क्या है, को सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए, रास्ते में थूकना नहीं चाहिए, रास्ते में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, एक इसे यम कहा जाता है। और कुछ नियम है, नियम क्या है, आपको टैक्स भरना है, आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ करना है और कुछ नहीं करना होता है। यदि कोई इसका ठीक तरीके से पालन करता है तो वे अच्छा नागरिक है। ठीक उसी प्रकार भगवान के द्वारा जो नियम और यम दिए गए हैं उसका यदि हम पालन करते हैं तो हम भगवान के भक्त माने जाएंगे। तो भगवान ने केवल 5 ही चीज करने के लिए कहा है, ज्यादा नहीं करना है। यदि हमें कुंती महारानी की तरह भक्त बनना है तो 5 चीज करना है और 4 चीज नहीं करना है, बहुत आसान है। चाहते हो करना, 5 चीज करना है और 4 चीज नहीं करना है। तो पहले क्या बताऊं, जो करना है वह बताऊं कि नहीं करना है वह बताऊं? आग लगती है तो सबसे पहले आग को बुझाना चाहिए, तो पहले जो नहीं करना है वह बता देता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए क्या नहीं करना है हमें। ये सारी कथा का सार बता रहा हूं, गीता और भागवत का सार ये है कि चार चीज नहीं करनी है, और उसमें से सबसे पहले है नो मीट ईटिंग। हृदय में शौक लगा नहीं लगा, हिंदी में बोलूंगा तो पता चलेगा। चार में से सबसे पहला नहीं करने जैसा है मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत कह रहा है। बिल्कुल भागवत के प्रथम स्कंध को खोलकर देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। क्यों? हाँ, जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव का आधार दूसरे जीव के ऊपर है, ये निश्चित है। जैसे एक सिंह होता है उसका आहार हिरण है, परंतु आप देखो सिंह जो है वह हिरण को ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव का आधार दूसरे जीव के ऊपर है, परंतु किस जीव का आधार किस जीव के ऊपर है यह निर्माण करने वाले भगवान है। भगवान ने सिंह को मांसाहार करने के लिए नियुक्त किया है तो वो मांस खाता है। गाय को शाकाहार बनाया तो वो शाक खाती है, घास इत्यादि खाती है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि सिंह मांस ही खाएगा, कभी घास नहीं खाएगा, और गाय घास ही खाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी। परंतु मनुष्य ही एक ऐसा पैदा हुआ है जो मांस भी चलेगा, घास भी चलेगा, रोटी भी चलेगी, सब्जी भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। कुत्ते का हो, सुअर का हो, गाय का हो, भैंस का हो, किसी का सब चलेगा, मनुष्य को सब चलता है। प्राणी से भी गिर चुका है यह मनुष्य। भगवान गीता में बिल्कुल क्लियर कहें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ता प्रयच्छति। मनुष्य जीवन केवल शाकाहारी ही है, वेजिटेरियन ही होना चाहिए। गेहूं खा सकते हैं, जो भी जमीन से पैदा होता है वनस्पति खा सकते हैं, मांस नहीं खा सकते। यदि मांस खाते हैं, कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे आप ऐसा ना क्यों कह रहे हैं। भाई हम नहीं कर रहे हैं, भागवत कह रहा है, और भागवत में बिल्कुल क्लियर लिखा है यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है तो मरने के बाद उसे कुंभी पाक नाम के नरक में डाला जाता है। जानना है उस नरक में क्या होता है? हाँ, रात को नींद नहीं आएगी भाई। भागवत के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में वर्णन है कि जो व्यक्ति बहुत मांस खाता है, हमारे पास समय बहुत कम है, नहीं तो इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से हो सकता था, मरने के बाद यमदूत के द्वारा उसे नरक में लेकर जाते हैं, और नरक में बिल्कुल हिसाब किताब होता है चित्रगुप्त के पास, इसने कितना टन मांस खाया है, इसने कितनी मछली खाई है, बिल्कुल एक से गिना हुआ होता है। और फिर यमराज जी उसे देखते हैं और कहते हैं, अच्छा एक काम करो, इसे कुंभी पार्क नरक में डालो, और कुंभी पार्क नरक में उस एक जीव को 10-10 यमदूत पकड़कर लेकर जाते हैं, और इस नरक में एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, हम बनाते हैं ना भजिया बनाते हैं तेल में फ्राई करने के लिए, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें कितने टन लीटर तेल होता है, और नीचे से बहुत हीट के द्वारा, गर्मी के द्वारा उस तेल को उबाला जाता है, और उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं, कभी कभी आग और धुआं निकलने लगता है, इतना हाई टेम्परेचर के ऊपर उस तेल को गर्म किया जाता है। और यमराज जी सजा सुनाते हैं कि इसने जितनी बार जितने मांस को तड़का मारा है, उससे 1000 गुना उसे उस तेल में जाकर फ्राई करो। वे तो उस कढ़ाई को देखकर, वह जीव उस कढ़ाई को, अरे हंसने की बात नहीं है भक्तों, ये रोने की बात है। यदि खाओगे अंडा तो पड़ेगा यमराज का डंडा। तो वह जीव डर जाता है कि ये लोग मुझे इसमें डालेंगे, चिल्लाता है कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, कभी मछली, कभी अंडे, कभी मुर्गी, कभी नहीं खाऊंगा। परंतु वे यमदूत उसे मारते, अरे मूर्ख, मनुष्य जीवन मिला था और तुम्हारी गली में लाल गोविंद प्रभु भी आए थे बताने के लिए, आज के बाद जो खाएंगे उसे तो कहेंगे। बेचारे माइक में इतना जोर जोर से बोल बोल कर थक गए, फिर भी नहीं माने। हाँ समय जब तक अज्ञान है तब तक ठीक है, लेकिन पता चलने के बाद पाप कभी नहीं होना चाहिए। तो उसे जबरदस्ती, वह चिल्लाता है फिर भी जबरदस्ती यमदूत के द्वारा उस तेल में डाला जाता है, उबलते हुए तेल में। खोलने लगता है उसकी चमड़ी, वे बिल्कुल कांप जाता है और मूर्छित हो जाता है। जब वो मूर्छित हो जाता है तो जैसे माताएं पूरी को बाहर निकालती हैं, वैसे उस व्यक्ति को बाहर रख देते हैं। भक्तों, यमराज नरक में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि नरक में एक विशेष शरीर दिया जाता है जिसे यातना शरीर कहते हैं। वहां पर व्यक्ति को दुख होता है, दर्द होता है, परंतु वह मरता नहीं है। स्पेशल दुख देने के लिए ही यमराज ये शरीर देते हैं। तो इस प्रकार से एक बार नहीं, हजारों हजारों बार, हजारों हजारों सालों तक उस नरक में उस जीव को दंडित किया जाता है। इसलिए कभी भी मांसाहार नहीं खाना चाहिए। मांसाहार खाने वाले नरक में जाते हैं। तो भक्ति के लिए यदि कोई मांसाहार करता है तो मांसाहार करने वाला कभी भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि मांसाहार करने वाले के हृदय में दया हो ही नहीं सकती है। क्योंकि चाहे मुर्गी हो या मछली हो या बकरी हो, वे किसी ना किसी के तो पुत्र हैं। हमारे पुत्र और हमारे पति मर जाते हैं तो कितने रोते हैं हम। वे जीव भी, मछली का भी विवाह होता है, बकरी का भी विवाह होता है, तब तो बच्चे होते हैं। तो वे भी किसी के पति हैं, वे भी किसी की पत्नी हैं, वे भी किसी के बच्चे हैं। क्या हम उसको मारेंगे तो उसके माँ को, उसके बाप को दुख नहीं होगा? अवश्य होगा, और उसके दुख का सारा फल हमें लगता है। और फिर यदि हमने किसी के, मान लीजिए किसी भी प्राणी को और प्राणियों में भी किसी के पत्नी को या पति को मारा है, तो मनुष्य जीवन में हमारे पति या पत्नी को कोई ना कोई मार डालेगा। कर्म की गति बहुत न्यारी है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी जानना है, आधे कम हो गए।